आगे सबक देखिए भाई। قال وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز وإن رده بطل وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة। گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کرتی ہے اور اپنے مہر مثل سے بہت کم مہر رکھتی ہے تو اس صورت میں اولیاء کو اعتراض کا حق ہے امام صاحب کے نزدیک، وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتے ہیں اور قاضی پھر اس خاوند کو بلوائے گا اور قاضی اس سے کہے گا کہ یا تو اس عورت کا مہر بڑھا کر کتنا کر دو، مہر مثل کر دو، یا اس سے جدائی اختیار کر لو۔ تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں اگر لڑکی نے، عورت نے اپنا مہر کم مقرر کیا ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اولیاء کو یہ حق نہیں ہے، اولیاء کو یہ حق نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ یہ خالص اس کا اپنا حق ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ کم سے کم مہر 10 درہم ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں۔ تو 10 درہم یہ تو حق شرع ہے، یعنی اس سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اس سے جو زائد ہے وہ اس عورت کا حق ہے، اور زائد جب اس کا اپنا حق ہے تو اس میں یہ جتنا بھی کمی کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ صاحب حق اپنے حق کو معاف کرے یا اپنے حق میں کمی کرے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ اسی طرح ہے، صاحبین فرماتے ہیں جیسے مہر تو زیادہ مقرر کیا ہو اور بعد میں وہ عورت اس مہر کے اندر کمی کر دے یا معاف کر دے پورا مہر، تو اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں۔ مثلاً ایک عورت کا مہر 2 لاکھ مقرر ہوا تھا اور پھر بعد میں وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ میں نے سارا مہر آپ کو معاف کر دیا، یا کہتی ہے کہ مجھے 2 لاکھ کے بجائے صرف 10,000 دے دو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو دیکھو یہ خالص عورت کا حق ہے، آپ یہ کم کر رہی ہے یا معاف کر رہی ہے تو اولیاء کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے مقرر کرنے کے بعد عورت کمی کرے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں، تو شروع نکاح کے اندر بھی وہ اپنا مہر کم کرے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے بھائی۔ تو لہذا وہ ابتدا میں مہر کے کم ہونے کو قیاس کرتے ہیں مقررہ مہر میں کمی یا معاف کرنے پر۔ ایک یہ ہے ابتدا میں ہی مہر کم رکھا جائے، اور ایک ہے کہ بعد میں مہر میں کمی کی جائے۔ تو وہ ابتدا کے اندر مہر کے اندر جو کمی ہے اس کو قیاس کرتے ہیں بعد میں جو مہر کے اندر عورت کمی کرتی ہے۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مہر ایسی چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہو اولیاء اس پر فخر کرتے ہیں، اور مہر کم ہو تو اس میں عار محسوس کرتے ہیں۔ لہذا اس مہر کی مشابہت ہو گئی کفاعت کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں جن میں کفاعت معتبر تھی، اور وہ چیزیں تھیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ان میں کمی ہو تو وہ عار محسوس کرتے ہیں، تو یہ مہر بھی کفاعت کے مشابہ ہو گیا۔ اور جب یہ کفاعت کے مشابہ ہو گیا اور کفاعت والی چیزوں میں تو اولیاء اعتراض کر سکتے تھے، لہذا یہاں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو صاحب قدوری نے یہ جو صورت مسئلہ بنائی، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا جو مرجوع الی قول تھا اسی پر یہ صورت صحیح ہو سکتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا پہلا قول تو یہ تھا کہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے تو منعقد تو ہوگا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا، ولی اجازت دے گا تو وہ نافذ ہو جائے گا، اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے پھر رجوع کر لیا تھا شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف۔ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عاقلہ بالغہ آزاد عورت جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، البتہ کف کے اندر ہونا چاہیے بھائی۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے بھی شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور اس مسئلے میں کیا بتایا کہ صاحبین فرما رہے ہیں اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے، مہر اگر کم بھی عورت نے مقرر کیا ہے اولیاء اعتراض معلوم ہوا साहिबैन के नजदीक निकाह मुनाकिद हो चुका है, मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी निकाह मुनाकिद हो चुका है। और यह तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का दूसरा कौल था, उसके मुताबिक निकाह मुनाकिद होता है। तो लिहाजा साहिब हिदाया फरमाते हैं कि यह सूरत मसला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मरजू इले कौल का एतबार किया जाए फिर ही सही बनती है। और यह मसला जो है शहादत सादिका है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने वाकई रुजू फरमा लिया था, इससे पता चल रहा है। बात समझ में आ गई। फिर आपने यह मसला पढ़ा था कि बाप या दादा सगीर या सगीरा का निकाह करवाएं तो वो सगीरा के महर मिसल में जितनी भी कमी करें या सगीर की बीवी के महर में जितनी भी ज्यादती कर दें उनके लिए जायज है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि बाप दादा के लिए भी गबन यसीर के मिसल तो कमी बेशी जायज है, गबन फाहिश के मिसल कमी ज्यादती जायज नहीं है। फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि बजाहिर साहिबैन के कौल से यह लगता है कि शायद निकाह मुनाकिद हो जाएगा, बाप और दादा अगर गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे सगीर या सगीरा का तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता वो कमी बेशी जायज नहीं होगी। क्योंकि साहिबैन के बारे में क्या फरमाया, वो फरमाते हैं कि कमी बेशी जायज नहीं है मगर गबन यसीर जितनी, ला यजूजुल हत्तु व ज्यादतु, कमी बेशी जायज नहीं है मगर इतनी जितने में लोग धोखा खा लेते हैं थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। तो बजाहिर लगता है कि अगर बाप दादा ज्यादा कमी बेशी करेंगे तो निकाह तो हो जाएगा, क्योंकि निकाह के अंदर तो महर को सिरे से जिक्र ही ना किया जाए निकाह फिर भी हो जाता है। तो बाप और दादा अगर गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे निकाह तो हो जाएगा, अलबत्ता वो गबन फाहिश जायज नहीं होगा, बजाहिर यूं लगता है। लेकिन साहिब हिदाया ने बतलाया नहीं, साहिबैन के कौल का मतलब यह है कि अगर बाप या दादा गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। वजह यह कि बाप और दादा को यह जो विलायत इजबार मिली है यह शफकत की वजह से है, और जब वो महर में गबन फाहिश कर रहे हैं तो इसके अंदर तो कोई शफकत नहीं है, तो इस विलायत का दारोमदार शफकत पर था, शफकत है तो उनको विलायत भी है, शफकत नहीं तो उनको विलायत इजबार भी नहीं। तो जब वो गबन फाहिश के साथ निकाह करवा रहे हैं तो इसमें कोई शफकत नहीं है, जब शफकत नहीं है तो उनको यहां विलायत इजबार ही नहीं है, जब विलायत इजबार नहीं है तो वो निकाह करवा ही नहीं सकते, निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। ये कहते हैं इसी तरह है जैसे बैग के अंदर, याद रखो सगीर और सगीरा के पास अगर माल है तो बाप और दादा सिर्फ उसमें तसरुफ कर सकते हैं और औलिया को तसरुफ की इजाजत नहीं। लेकिन बाप और दादा भी अगर सगीर या सगीरा के लिए कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो गबन यसीर के साथ तो जायज है, गबन फाहिश के साथ जायज नहीं। तो जिस तरह बैग के अंदर बाप और दादा को गबन फाहिश की इजाजत नहीं, इसी तरह निकाह के अंदर भी उनको गबन फाहिश की इजाजत नहीं होगी भाई। तो वो इस निकाह को कियास करते हैं बैग पर। जबकि इमाम साहब की दलील साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाई कि यहां पर आपने कहा बाप और दादा अगर गबन फाहिश के साथ निकाह करवाते हैं, महर बहुत थोड़ा रख दिया सगीरा का या सगीर की बीवी का महर बहुत ज्यादा रख दिया, तो बाप और दादा अगर गबन फाहिश के साथ निकाह करवाते हैं, आप कहते हैं शफकत नहीं है, हम कहते हैं नहीं, यूं न कहें शफकत नहीं है, हम यूं कहेंगे कि शफकत है या नहीं ये जाहिर नहीं
जी।
ये बात जाहिर नहीं, इसलिए क्योंकि निकाह के अंदर सिर्फ औरत के लिए महर मकसूद नहीं होता बल्कि निकाह के अंदर महर से भी बढ़कर और बड़े बड़े मकासिद मकसूद होते हैं। एक खानदान आबाद करना है भाई, बात समझ में आ गई, घर का निजाम चलाना है, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी हासिल करनी है और उसके बाद औलाद हासिल होगी, औलाद की तरबियत करनी है, तो इस निकाह के महर के अलावा भी और बड़े बड़े मकासिद हैं भाई। तो बाप और दादा ने अगर महर में कमी या ज्यादती की है तो मालूम हुआ कोई और बड़ा फायदा उनके मद्देनजर था, कोई और बड़ा फायदा उनके मद्देनजर था। लिहाजा अब महर के एतबार से देखा जाए तो शफकत नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरे एतबार से क्या हो, वहां कोई और बड़ा फायदा हो, शफकत हो। तो लिहाजा इस निकाह के अंदर जो बाप और दादा ने करवाया और गबन फाहिश के साथ करवाया, इसमें शफकत है या शफकत नहीं यह पता नहीं चल रहा, यह पता यानी यहां शफकत अमरे बातिनी बन गई, और जब एक चीज अमरे बातिनी बन जाए उसका पता नहीं चल सकता एक मकाम पर, तो उस चीज की दलील पर हुक्म का मदार हो जाता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि खुरूज नजासत से वजू टूट जाता है, और नींद की हालत में जब इंसान पहलू के बल सोया हो तो फिर उस वक्त भी एहतमाल है खुरूज नजासत का, लेकिन इंसान तो सोया हुआ है, खुरूज नजासत का उसको पता नहीं चलेगा भाई। तो लिहाजा नींद की हालत में जब खुरूज नजासत यानी वजू टूटने की इल्लत का पता नहीं चल सकता, तो इस खुरूज नजासत की जो इल्लत है यानी पहलू के बल सोना, उसी को क्या कर दिया गया, उसी पर हुक्म का मदार कर दिया गया। तो जो पहलू के बल सोएगा यूं समझेंगे गोया उसका वजू टूट गया है, अब उसको दोबारा बाद में वजू करना पड़ेगा। तो देखो जब हुक्म की इल्लत का पता ना चले तो हुक्म का दारोमदार किस पर कर दिया, उस इल्लत का जो सबब है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी इसी तरह है, जब बाप और दादा ने गबन फाहिश के साथ निकाह करवाया है, अब शफकत है या शफकत नहीं पता नहीं चल रहा, तो इस शफकत की जो दलील है उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा। और शफकत की दलील क्या थी, किससे पता चल रहा था शफकत है, कुर्ब कराबत, क्योंकि करीबी रिश्तेदारी है बाप और दादा की, अपनी औलाद और औलाद की औलाद से करीबी रिश्तेदारी है। जब शफकत का पता नहीं चल सकता तो शफकत की जो दलील है कुर्ब कराबत, उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा। और कुर्ब कराबत तो बाप और दादा में मौजूद है, लिहाजा गबन फाहिश के साथ उनका निकाह भी जायज हो जाएगा। शफकत का तो पता नहीं चल रहा लेकिन शफकत की दलील तो मौजूद है, जबकि बाकी रिश्तेदारों के अंदर वो अगर गबन फाहिश के साथ करवाते हैं तो वहां भी शफकत क्या होगी, अमरे बातिनी, और हुक्म का मदार फिर किस पर हो जाएगा, शफकत की दलील पर यानी कुर्ब कराबत पर, और वहां तो कुर्ब कराबत मौजूद नहीं है, लिहाजा वो गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे तो वहां कुर्ब कराबत ही नहीं है, लिहाजा वो निकाह ही जायज नहीं होगा। जबकि बाप और दादा में शफकत तो पता नहीं लेकिन शफकत की दलील मौजूद है, लिहाजा वो गबन फाहिश के साथ भी निकाह करवाएंगे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और बाकी साहिबैन ने इसको कियास किया था बै पर, निकाह को, कि जैसे बाप और दादा को ब्याह शिरा में गबन फाहिश की इजाजत नहीं, इसी तरह निकाह में भी उनको गबन फाहिश की इजाजत नहीं होगी। तो इमाम साहब की तरफ से उसका जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि भाई ब्याह शिरा के अंदर माल ही तो मकसूद होता है, वहां सिर्फ मालियत मकसूद है, लिहाजा अगर मालियत में कमी आएगी तो वह जायज नहीं होगा। जबकि हमने बता दिया निकाह के अंदर सिर्फ महर और महर की मालियत मकसूद नहीं होती, बल्कि निकाह में महर से भी बढ़कर और मकासिद होते हैं। बात समझ में आ गई? और इसी तरह बाप और दादा अगर गैर कुफ में सगीर या सगीरा का निकाह करवा दें तो भी ये जायज है, इसलिए क्योंकि बाप और दादा निकाह करवा रहे हैं तो वहां शफकत का तो पता नहीं चल सकता लेकिन शफकत की दलील कुर्ब कराबत तो मौजूद है, मालूम है कोई और बड़ा फायदा देखकर उन्होंने निकाह करवाया होगा, लिहाजा वो निकाह करवा सकते हैं, कोई और वली नहीं करवा सकता। जबकि साहिबैन इस मसले में भी फरमाते हैं कि बाप और दादा अगर गैर कुफ में निकाह करवाते हैं तो यहां जरर और नुकसान जाहिर है, सगीर या सगीरा का नुकसान हो रहा है, गैर कुफ में निकाह हो रहा है तो यहां जरर जाहिर है, लिहाजा ये जायज नहीं है। उसके बाद फिर अगली फसल हमने शुरू की थी जिसमें साहिबे हिदाया निकाह की वकालत और इसी तरह फजूली या वली वगैरह का जो निकाह है उसको बयान फरमा रहे थे, और मसला जिक्र हुआ था कि निकाह में एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है, लिहाजा चचा का बेटा अपनी भतीजी के साथ निकाह करता है जबकि यह खुद ही उसका वली भी है और कोई वली नहीं, सबका इंतकाल हो चुका है, तो अब चचा का बेटा खुद असील है, अपना निकाह कर रहा है और वो जो भतीजी है उसका ये वली है भाई, तो लिहाजा ये मुतवल्ली हो गया दोनों जानिब निकाह का। अब ये दो गवाहों के सामने सिर्फ इतना कह दे मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया, ये कहते ही निकाह मुनाकिद हो गया। अलबत्ता वो सगीरा को बालिग होने के बाद खियारे बुलुग मिलेगा, वो चाहे तो इस निकाह को फसख कर सकती है। तो देखो एक ही शख्स दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हो गया और उसका एक ही लफ्ज जो है वो दोनों ईजाब और कबूल के कायम मकाम हो गया। इसी तरह एक औरत किसी शख्स से निकाह करना चाहती है और जिससे निकाह करना चाहती है उसी को अपना वकील भी बना दिया कि तुम मेरे साथ अपना निकाह कर दो, तो अब वो शख्स अपना निकाह करना चाहता है तो वो है असील और औरत ने उसको अपना वकील भी बना दिया, तो अब ये शख्स असील भी है और वकील भी है, ये दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हो गया, ये दो गवाहों के सामने कह देता है मैंने फलां औरत से अपना निकाह कर दिया, तो याद रखो निकाह मुनक्किद हो जाएगा, ये हमारे नजदीक है। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह दोनों मसलों में फरमाते हैं जायज नहीं, दोनों मसलों में फरमाते हैं ये जायज नहीं, इसलिए क्योंकि इस सूरत में एक ही शख्स का मुमल्लिक और मुतमल्लिक होना लाजिम आएगा। मुमल्लिक का माना है दूसरे को मालिक बनाने वाला और मुतमल्लिक का माना है खुद मालिक बनने वाला। जैसे बैअ के अंदर आप ईजाब व कबूल करते हैं तो आप मबीए के मालिक बन गए, तो खरीदार बन गया मुतमल्लिक, मालिक बन गया है मबीए का, और बेचने वाला वो मुमल्लिक बन गया, वो उसको मालिक बनाने वाला है। और याद रखो हमेशा मुमल्लिक और होता है, मुतमल्लिक और होता है, एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं हो सकता। मसलन आप कहते हैं मैंने इस गाड़ी का मालिक बना दिया, भाई किसको मालिक बनाया? मैंने अपने आप को मालिक बनाया। भाई ये कैसे हो सकता है, अपने आप को कैसे मालिक बना सकते हैं, आप तो पहले से इसके मालिक हैं। तो मुमल्लिक और मुतमल्लिक एक आदमी नहीं हो सकता, वो दोनों अलग अलग होंगे। ये इसी तरह मुतालिब और मुतालब, जब बैअ होगी तो खरीदार जो है वो मबीए का मुतालबा करेगा कि अब मबीए मेरे हवाले करो, तो वो होगा मुतालिब, और बेचने वाला क्या है? मुतालब है। तो देखो मुतालिब और होता है, मुतालब और, किसी दूसरे से मुतालबा किया जाता है, अपनी जात से मुतालबा नहीं किया जाता। तो एक ही शख्स एक ही चीज के एतबार से एक ही जमाने के अंदर या मुमल्लिक होगा या मुतमल्लिक होगा, दोनों नहीं हो सकता। इसी तरह एक ही शख्स एक ही चीज के लिए एक जमाने के अंदर या मुतालिब होगा या मुतालब होगा, वो एक ही चीज के लिए एक ही जमाने में मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली एक शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि इस सूरत में एक ही शख्स का मुमल्लिक और मुतमल्लिक होना लाजिम आएगा या एक ही शख्स का मुतालिब और मुतालब होना लाजिम आएगा, और यह नहीं हो सकता, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता पहले मसले के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस मसले के अंदर चूंकि वली खुद ही उसका जिम्मेदार है, लिहाजा वली वाले मसले के अंदर तो निकाह हो जाएगा। जब चचा के बेटे ने अपनी भतीजे से निकाह किया है तो वो चूंकि खुद ही वली है, वहां तो मजबूरी है, वली के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं होता, वली ही तो जिम्मेदार होता है, तो लिहाजा वहां जरूरत की वजह से वो निकाह हो जाएगा, एक ही शख्स दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली बन जाएगा। जाब्ता क्या था उनके नजदीक? एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत की वजह से वली वाले मसले का इससे इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस्तिस्ना कर देते हैं कि वहां जरूरत की वजह से वो एक ही शख्स मुतवल्ली हो जाएगा भाई। लेकिन वकील वाले मसले में कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, वो औरत जिस शख्स से निकाह करना चाहती है उसी को वकील बनाने की क्या जरूरत है, किसी और आदमी को वकील बना दे, वो उस आदमी से उसका निकाह करवा दे, तो वहां कोई हाजत नहीं, लिहाजा वहां एक शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता। इस पर फिर एतराज मैंने जिक्र किया कि भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल तो पीछे गुजरा था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तो विलायत इजबार सिर्फ बाप और दादा को हासिल होती है और तो किसी को विलायत इजबार ही नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक सिर्फ बाप को विलायत इजबार है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक बाप और दादा दोनों को विलायत इजबार है और किसी को नहीं, जबकि इंदल अहनाफ बाप और दादा के अलावा और अवलिया को भी क्या है, विलायत इजबार हासिल होती है। तो इश्काल होता है कि पीछे तो वली के मसले में वहां तो चचा का बेटा वली बन रहा है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तो चचा का बेटा वली बन ही नहीं सकता भाई, वो तो सिर्फ बाप और दादा बनते हैं। तो जवाब उसका ये जवाब शाबाश शारहीन ने लिखा कि एतराज यहां होता है, अलबत्ता उसका यह जवाब दिया जा सकता है कि शायद ये मसला इमाम शाफी रहमतुल्लाह के किसी दूसरे कौल पर मबनी हो सकता है उनका कोई और कौल हो इस मसले में कि बाप और दादा के अलावा और आसाबात भी औलिया बन सकते हैं, तो हो सकता है ये उस पर मबनी हो, वरना पीछे जो उनका मजहब जिक्र हुआ था तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के उस कौल पर तो ये मसला मबनी नहीं हो सकता। तो ये तो था इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह का मजहब, जबकि हमारे नजदीक निकाह के अंदर एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है। वजह यह कि निकाह के अंदर जो वकील होता है वो सिर्फ मुअब्बिर है, वो सिर्फ जुबान से अल्फाज की ताबीर कर रहा है, जुबान से अल्फाज को अदा कर रहा है, और वो सफीर है, पैगाम पहुंचा रहा है दोनों जानिब का, और दोनों जानिब से पैगाम पहुंचाने में तो कोई खराबी और कोई मुनाफात नहीं, एक ही आदमी दोनों तरफ का पैगाम एक दूसरे को पहुंचा सकता है। हां मुनाफात जो है हुकूक के अंदर है, किसके अंदर है? हुकूक के अंदर है। बैअ के अंदर हुकूक का ताल्लुक अकद करने वालों से होता है, वकील जो है वो अगर मसलन अकद कर रहे हैं तो वही वकील उनमें से एक मुमल्लिक बन रहा है और एक क्या बन रहा है, मुतमल्लिक बन रहा है, दो अफराद हैं, दो वकील हैं, एक क्या बन रहा है, मसलन दो आदमियों के दो वकील हैं, एक चीज को बेच रहा है, दूसरा चीज को खरीद रहा है, यह अकद किसके अंदर हो रहा है, वकीलों के अंदर हो रहा है। यही वकील जो अकद कर रहे हैं, ये इनमें से एक बन जाएगा मुमल्लिक और दूसरा क्या बन जाएगा, मुतमल्लिक बन जाएगा, या दोनों में से एक मुतालिब बन जाएगा यानी मुतालबा करने वाला और दूसरा क्या बन जाएगा, मुतालब बन जाएगा। इसलिए क्योंकि हुकूक बैअ का ताल्लुक अकद करने वालों से होता है, जिन्होंने अकद किया है वही मुतालबा करेंगे और जिससे अकद किया उसी से मुतालबा किया जाएगा, तो वही मुतालिब और मुतालब बनते हैं या वही मुमल्लिक और मुमल्लक बनते हैं। जबकि निकाह के अंदर ऐसा नहीं है, निकाह के अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक वकील से नहीं होता, वकील का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। चुनांचे इसीलिए जब निकाह किया जाता है तो वकील सिर्फ ये नहीं कहता मैंने निकाह किया, बल्कि बाकायदा नाम लेता है किसका निकाह करवा रहा है और किससे करवा रहा है। तो वहां वकील सिर्फ अल्फाज पहुंचा रहा है, हत्ता कि वो अपने मुवक्किलों के नाम बाकायदा उनको निकाह में जिक्र करना पड़ते हैं, जबकि बैअ के अंदर वो बाकायदा अकद कर रहे हैं, वहां मुवक्किल का नाम जिक्र करने की कोई हाजत और जरूरत नहीं। तो लिहाजा निकाह और बैअ में फर्क आ गया। बैअ के अंदर अकद के हुकूक का ताल्लुक, जो वकील अगर वो अकद कर रहे हैं तो वकीलों से हुकूक अकद भी मुतालिक होंगे, मुतालबा वकील ही कर सकता है, वो जो इसका मुवक्किल है वो मुतालबा आकर नहीं कर सकता। जबकि निकाह के अंदर वकील सिर्फ सफीर है, मुअब्बिर है, पैगाम रसा है, लिहाजा वो दोनों जानिब का सफीर बन सकता है, हुकूक अकद का इससे ताल्लुक ही नहीं है। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बताया कि जब एक ही शख्स दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हो जाएगा तो सिर्फ उसका यह कह देना मैंने फुलां का फुलां से निकाह कर दिया, बस यही ईजाब और कबूल दोनों के कायम मकाम हो जाएगा। ईजाब अलग करना पड़े और कबूल अलग करना पड़े इसकी कोई हाजत नहीं, इसका यह कलाम ही दो कलामों के कायम मकाम है, क्योंकि यह दोनों तरफ का मुतवल्ली है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز وإن رده بطل وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه। भाई मैंने आपको बतलाया था फजूली के बारे में, गैर मुतअल्लिका आदमी। एक तो है कि आप एक अकद खुद करते हैं क्योंकि शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है, मसलन आप अपना निकाह खुद करना चाहते हैं तो शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है, आप निकाह कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी गाड़ी खुद बेचना चाहते हैं, शरीयत ने इख्तियार दिया है, आप अपनी गाड़ी बेच सकते हैं। या आप किसी दूसरे को वकील बनाते हैं कि जाओ जाकर मेरी ये गाड़ी फरोख्त कर दो या जाकर मेरा निकाह करवा दो। और अगर कोई एक गैर मुतअल्लिका आदमी खुद ही आपकी गाड़ी बेच दे या आपका निकाह करवा दे तो इसको फजूली कहते हैं। मसलन वो खुद ही निकाह करवा के आ गया, आपने उसको वकील नहीं बनाया था, उसको ये विलायत हासिल नहीं थी, उसने फिर भी निकाह करवाया। तो याद रखो इंदल अहनाफ फजूली अगर कोई अकद करवा देता है गैर मुतअल्लिका आदमी तो वो उस साहिब तसर्रुफ की इजाजत पर मौकूफ है। मसलन कोई शख्स आपकी गाड़ी बेचकर आ गया आपकी इजाजत के बगैर, तो अब यह बेअ मुनाकिद हो गई इंदल अहनाफ, अलबत्ता आपकी इजाजत पर मौकूफ है। आप इजाजत देंगे तो फिर यह बेअ मुनाकिद हो जाएगी, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो यह बेअ बातिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसी तरह एक शख्स खुद ब खुद आपकी इजाजत के बगैर आपका निकाह करवा कर आ गया तो यह आपकी इजाजत पर मौकूफ है। आप इजाजत देंगे तो फजूली का करवाया हुआ यह निकाह नाफिज हो जाएगा, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो यह निकाह बातिल हो जाएगा। तो आइंदल अहनाफ फजूली जो है कोई अकद करवाता है तो वह साहिब इजाजत की इजाजत पर मौकूफ रहता है। अब सूरत मसला यह है कि एक शख्स का गुलाम या बांदी है, आका के अलावा किसी और आदमी ने उस गुलाम या बांदी का कहीं निकाह करवा दिया। अब यह जो आदमी जिसने निकाह करवाया यह फजूली है भाई, और गुलाम और बांदी तो अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते, लिहाजा अब यह जो निकाह करवाया है यह आका की इजाजत पर मौकूफ है। आका इजाजत दे देगा तो यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा, और अगर आका इजाजत नहीं देगा तो यह निकाह बातिल हो जाएगा। सूरत समझ में आ रही है, एक शख्स ने किसी दूसरे के गुलाम या बांदी का निकाह करवा दिया तो ये गुलाम या बांदी का निकाह उनके आका की इजाजत पर मौकूफ है, वो इजाजत देगा तो हो जाएगा, इजाजत नहीं देगा तो नहीं होगा। ये तो एक सूरत थी कि फजूली ने किसी गुलाम या बांदी का निकाह करवाया। दूसरी सूरत, फजूली ने किसी आदमी या औरत का निकाह करवा दिया, तो याद रखो जिस आदमी या औरत का फजूली ने निकाह करवाया है वो निकाह उनकी इजाजत पर मौकूफ है। किसी आदमी का निकाह उसकी इजाजत के बगैर करवाया है तो वो आदमी इजाजत देगा तो निकाह हो जाएगा, वो इजाजत नहीं देगा तो निकाह नहीं। किसी औरत का निकाह करवाया है फजूली ने तो वो औरत इजाजत दे देगी तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अगर वो इजाजत नहीं देगी तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, व तजवीजुल आबदी वल आमती बिगैर इज़्नी मौलाहुमा, और निकाह करवाना गुलाम और बांदी का बिगैर इज़्नी मौलाहुमा इन दोनों की आका की इजाजत के बगैर मौकूफ़ुन, ये निकाह क्या रहेगा, मौकूफ रहेगा। मैंने बताया भाई फजूली जब भी आकद करता है वो निकाह साहिब इजाजत की इजाजत पर मौकूफ रहता है। तो कहते हैं ये गुलाम और बांदी का निकाह करवाना उनके आका की इजाजत के बगैर मौकूफ़ुन, ये मौकूफ रहेगा। फ़इन अजाज़ल मौला जाज़ा, अगर आका ने इजाजत दे दी तो जायज हो जाएगा। वइन रद्दहु बतला, और अगर आका ने इसको रद्द कर दिया तो ये निकाह बातिल हो जाएगा। तो देखो यहां निकाह करवाया गुलाम या बांदी का तो इन्हीं की इजाजत पर यह निकाह नहीं मौकूफ, गुलाम या बांदी की इजाजत पर, बल्कि आका की इजाजत पर मौकूफ है। तवज्जो है, जबकि अगले मसले में जिसका निकाह करवा रहा है फजूली उसी की इजाजत पर निकाह मौकूफ होगा। मसलन किसी आम आदमी या आम औरत का निकाह करवा दिया तो वो तो गुलाम या बांदी नहीं है, वो तो आजाद आदमी है, आजाद औरत है जिसका निकाह करवाया गया है। तवज्जो है, लिहाजा उन्हीं की इजाजत पर निकाह मौकूफ रहेगा। आगे देखिए, वकदालिका लौजा वजा रजुल उमरा अतन, और इसी तरह अगर निकाह करवाया किसी आदमी ने इमरा अतन किसी औरत का बगैर रिजाहा औरत की रजामंदी के बगैर ही, और रजुलन ये किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी का निकाह करवाया बगैर रिजाहू उसकी मर्जी के बगैर, तो भी यही हुक्म है, यानी जिनका निकाह करवाया उनकी इजाजत पर यह निकाह मौकूफ है। वहादा आइंदाना, और ये हमारे नजदीक है। फ़इन्न कुल्ल अक़्दिन सदरा मिनल फ़ुज़ूली, इसलिए क्योंकि हर ऐसा अक़द जो किसी फजूली से सादिर हो यानी फजूली से पेश आए, हर ऐसा निकाह जो किसकी तरफ से पेश आए, किसी फजूली की तरफ से, वलहु मुजीज़ुन, इस हाल में कि कोई उसका इजाजत देने वाला भी हो, इन आकदा मौकूफन अलल इजाजती, ये निकाह मौकूफ होकर मुनाकिद हो जाएगा अलल इजाजती उस आदमी की इजाजत पर। इस जगह को समझ लो भाई, ये जरा मुश्किल जगह है। ये जाब्ता जिक्र फरमा रहे हैं, इंदल अहना फइन कुल्ल अक्दिन सदरा मिनल फुजूली वलहु मुजीज़ुन इन आकदा मौकूफन अलल इजाजा, ये जाब्ता जिक्र। जाब्ता क्या, तवज्जो से सुनो, जो भी आकद कोई फजूली करवाएगा और हाल यह है कि उस आकद का कोई इजाजत देने वाला होना चाहिए, उस आकद का कोई वलहू मुजीज़ुन, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो उस आकद की इजाजत दे सके, तो फिर वो आकद मुनाकिद हो जाएगा और उस शख्स की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। क्या ज़ाब्ता क्या हुआ, जब भी फजूली कोई आकद करवाए तो वो आकद मुनाकिद होगा। कब मुनाकिद होगा, जब उसका कोई इजाजत देने वाला भी हो, अगर इजाजत देने वाला ही नहीं है तो फिर वह आकद मुनाकिद ही नहीं होगा। इजाजत देने वाला हो तो फिर मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन उसकी इजाजत पर मौकूफ रहेगा। तवज्जो है, तो बाज उलमा ने यहां मुजीज का माना किया कबूल करने वाला, जब भी फजूली कोई आकद करे वलहू मुजीज़ुन, और उस आकद को कोई कबूल करने वाला हो, यानी इजाब के साथ साथ कबूल भी पाया जाए उसी मजलिस में, तो फिर वो इजाजत पर मौकूफ होकर मुनाकिद हो जाएगा। तवज्जो है, देखो मसलन जैद है, जैद का निकाह एक आदमी ने करवाया उसकी इजाजत के बगैर, तो ये आदमी हुआ फजूली, और इसने एक मजलिस के अंदर कहा कि मैंने जैद का निकाह फुलानी औरत से कर दिया। तवज्जो है, और इसी मजलिस में एक और आदमी जो है उस औरत की तरफ से कबूल करता है, वो भी फजूली है, दूसरा आदमी भी जैद की तरफ से भी फजूली, उस औरत जिसे निकाह करवाया जा रहा है उसकी तरफ से भी एक फजूली, जैद की तरफ से फजूली ने कहा मैंने जैद का निकाह इस औरत से कर दिया, और दूसरे आदमी ने औरत की तरफ से क्या कहा फजूली बनकर के मैंने इसका जैद का निकाह इस औरत से कबूल कर लिया। तो बाद शारहीन ने लिखा यह मुजीद से मुराद यह कबूल करने वाला है। कौन मुराद है? औरत की तरफ से भी कबूल करने वाला था या नहीं उसी मजलिस में? देखो अब तर्जमा जरा सुनो, फइन्ना कुल्ल अक्दिन सादरा मिनल फुजूली, हर ऐसा आकद जो सादिर हो किसी फुजूली से, वलहू मुजीज़ुन, और कोई इसको कबूल करने वाला भी हो। मैंने बताया मुजीज का बाद शारहीन ने तर्जमा क्या किया, इससे कौन मुराद है? इजाजत देने वाले से मुराद है कबूल करने वाला। तो मुजीज का माना हम कबूल करने वाले के कर रहे हैं जरा, लेकिन याद रखना मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे कबूल करने वाला मुराद नहीं है। तो बहरहाल जो बाद शारहीन ने तकरीर की वो मैं बयान कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं, फइन्ना कुल्ल अक्दिन सदरा मिनल फुजूली, हर ऐसा अक्द जो किसी फजूली से सादिर हो, वलहू मुजीज़ुन, और कोई उसको कबूल करने वाला भी हो, यानी उसी मजलिस में कोई उसको क्या कर ले, कबूल भी कर ले, इन आकद मौकूफन अलल इजाजती, तो ये आकद उस आदमी की इजाजत पर मौकूफ होकर मुनाकिद हो जाता है। मुनाकिद तो हो गया लेकिन उसकी इजाजत पर मौकूफ है। तवज्जो है, मुजीज से कौन मुराद है? उसी मजलिस में कोई कबूल करने वाला हो, अगर उस मजलिस में कबूल करने वाला नहीं तो मुनाकिद भी नहीं होगा, क्योंकि आकद में एक ईजाब होता है एक कबूल होता है। सिर्फ ईजाब से तो आकद नहीं होता, ईजाब के साथ साथ क्या चाहिए, कबूल भी चाहिए। तवज्जो है, मैं आपको अपनी किताब बेचना चाहता हूं, तो जब मैं कहूंगा मैंने किताब आपको बेच दी तो आपका यह कहना भी जरूरी है मैंने खरीद ली या मैंने कबूल की। तवज्जो है, तो सिर्फ ईजाब से आकद नहीं होता, ईजाब के साथ कबूल भी चाहिए। तो वह लहू मुजीज उनसे कौन मुराद है? कबूल करने वाला मुराद है, उसके बगैर आकद नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि नहीं, मुजीज से मुराद कबूल करने वाला नहीं है, बल्कि मुजीज से मुराद है इजाजत देने वाला। फिर सुनो, फइन्ना कुल्ल अक्दिन सदरा मिनल फुजूली, हर ऐसा आकद जो किसी फजूली की तरफ से पेश आए, वलहू मुजीज़ुन, और कोई उसका अब मुजीज का माना कबूल करने के नहीं करने बल्कि इजाजत देने वाला, वलहू मुजीज़ुन, इस हाल में कि कोई उसका इजाजत देने वाला भी हो, तो फिर इन आकद मौकूफन अलल इजाजती, तो ये आकद जो है इजाजत पर मौकूफ होकर मुनाकिद हो जाएगा। मालूम हुआ फजूली जब भी कोई आकद करवाए तो कोई ना कोई इजाजत देने वाला होना चाहिए। मसलन देखो, दो फजूली थे, उन्होंने जैद और जैनब का निकाह करवा दिया। मसलन जैद की तरफ से एक फजूली है और जैनब की तरफ से दूसरा फजूली है, जैद और जैनब को नहीं पता, उन्होंने इजाजत नहीं दी लेकिन दो फजूलियों ने निकाह करवा दिया। अब मुझे बताइए ये जो आकद है इसकी इजाजत देने वाले मौजूद हैं या नहीं?
जी
इस वक्त तो मौकूफ होकर मुनकिद हो रहा है, लेकिन जैद इजाजत उधर से दे दे और जैनब इधर से इजाजत दे देगी बाद में, इस वक्त नहीं, जैद बाद में इजाजत देगा, जैनब बाद में इजाजत देगी, तो यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा। तो किया तो दो फजूलियों ने, तो मालूम हो मुजीज से मुराद वो कबूल करने वाला नहीं है, कबूल करने वाला तो वो फजूली ही था, बल्कि इजाजत देने वाले से कौन मुराद है? जिसके हक में तसर्रुफ किया जा रहा है, जिसकी तरफ से आकद किया जा रहा है, और वो कौन है? जैद और जैनब हैं। तो हर ऐसा आकद जो फजूली करे और उसका कोई इजाजत देने वाला मौजूद हो तो वो आकद मुनाकिद होगा मौकूफ होकर उनकी इजाजत पर, बाद में वो इजाजत देंगे हो जाएगा, इजाजत नहीं देंगे नहीं होगा। तो मुजीज कोई जरूर होना चाहिए, अगर आकद फजूली ने करवाया और कोई मुजीज ही नहीं है फिर वो आकद मौकूफ होकर भी नहीं मुनाकिद होगा। भाई इजाजत देने वाला ही नहीं है तो फिर मौकूफ होकर कैसे मुनाकिद होगा, वो मुनाकिद ही नहीं होगा। मसलन देखो, एक यतीम लड़की है नाबालिगा है, यह यतीम लड़का है नाबालिग है, और इसके अवलिया में से कोई भी नहीं जिंदा। भाई अब एक फजूली इस नतीम या यतीमा का निकाह करवाता है, अब मुझे बताइए नाबालिग बच्चा या बच्ची अपना निकाह कर सकते हैं? वो निकाह नहीं कर सकते। और मुझे बताइए इनके अवलिया भी कोई नहीं जिंदा, तो मालूम हुआ कोई इजाजत देने वाला नहीं है इस निकाह की, लिहाजा ये मौकूफ होकर भी मुनाकिद नहीं होगा, ये निकाह हुआ ही नहीं। बात समझ में आ गई, क्योंकि कोई इजाजत देने वाला नहीं, कोई वली होता तो वो इजाजत देने वाला था, वली जिंदा ही नहीं है, कोई एक भी नहीं जिंदा। बात समझ में आ गई, न बाप के खानदान की तरफ से न मां के खानदान की तरफ से कोई जिंदा नहीं है, कोई इजाजत देने वाला नहीं है, लिहाजा वलहू मुजीज उनके जरिए इस तरह के अकद से एहतराज किया। यानी अगर फजूली ऐसा अकद करवाता है जिसका कोई इजाजत देने वाला है ही नहीं तो वो मुनाकिद हो गई नहीं, अगर इजाजत देने वाला है फिर उसकी इजाजत पर मौकूफ होकर मुनाकिद हो जाएगा और जाकर इजाजत लेना पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो ये यतीम और यतीमा का निकाह कोई करवाए और उस और यतीम और यतीमा का कोई वली नहीं है तो ये निकाह मौकूफ होकर भी मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि इजाजत देने वाला है ही कोई नहीं। आपके जहन में इश्काल आएगा, अगर औलिया ना हो तो काजी वली होता है, आपने पढ़ा था, काजी नहीं है तो हाकिम या बादशाह जो है वो वली होता है, तो ये वो वली तो मौजूद है, इजाजत देने वाला तो मौजूद है। तो शारहीन जवाब देते हैं कि ऐसी जगह फर्ज कर ले जहां ना काजी हो ना खलीफा हो, यानी दारुल हर्ब में, दारुल हर्ब के अंदर कुफार का वतन है, वहां ना काजी है वहां ना मुसलमानों की खिलाफत है, तो वहां पर अगर एक मुसलमान यतीम या यतीमा जो है, नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्ची है, उसका कोई निकाह करवाता है, अब देखो अवलिया भी कोई नहीं और काजी और खलीफा भी यहां पर नहीं है, तो लिहाजा इसका कोई मुजीज नहीं, लिहाजा ये मौकूफ होकर भी मुनाकिद नहीं होगा। या दूसरी सूरत ले लें, दूसरा मसाला ले लें, मुकातब आप जानते हैं वो गुलाम जिसे आका ने कह दिया मसलन तुम मुझे 5 साल में 50 लाख रुपए लाकर दे दो तो तुम आजाद हो। आका ने अपने गुलाम से क्या कहा, तुम मुझे 5 साल में 50 लाख रुपए लाकर दे दो तो तुम आजाद हो, और गुलाम ने यह अकद कबूल कर लिया। याद रखो ये जो अकद दोनों के दरमियान हुआ आका और गुलाम में, इसको अकदे किताबत कहते हैं। अब गुलाम जो है मसलन हर महीने, तो हर महीने जितने भी पैसे बनते हैं उस हिसाब से वो हर महीने किस्तें अदा करता चला जाएगा यहां तक कि 50 लाख पूरे कर दे, और जब 50 लाख पूरे हो जाएंगे तो ये गुलाम आजाद हो जाएगा। और याद रखो जिस दिन ये अकदे किताबत किया गुलाम ने अपने आका से, उस दिन ये गुलाम जो है अब आका इससे खिदमत नहीं ले सकता, अब ये गुलाम आजाद आदमी की तरह हो गया, ये आका की खिदमत नहीं करेगा, जाएगा जाकर पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तवज्जो है। तो ये जो आकद हुआ ये क्या है, आकदे किताबत। अब मुकातब जो है जाकर वो तिजारत और कारोबार कर रहा है, चीजें खरीदता है बेचता है, पैसे कमा रहा है और लाकर आका को दे रहा है। इस मुकातब ने गुलामों की भी तिजारत शुरू कर दी, पैसे कुछ जमा हो गए, इसने किसकी तिजारत शुरू कर दी, गुलामों की तिजारत शुरू कर दी। अब याद रखो ये जो गुलाम है, गुलाम के अंदर शादी और निकाह ये ताजिरों के यहां ऐब शुमार होता है, इससे गुलाम की कीमत कम हो जाती है, लिहाजा मुकातब गुलामों की खरीदो फरोख्त की तो उसको इजाजत है, लेकिन अपने गुलामों में से किसी गुलाम का निकाह करवाने की उसको इजाजत नहीं है। मैंने बताया ना मुकातब खुद भी गुलाम है, लेकिन वो किसकी तरह हो गया, आजाद आदमियों की तरह, आजाद तो नहीं है लेकिन आजाद आदमियों जैसा हो गया, बेउशिरा कर रहा है, पैसे कमा कर ला रहा है, अब अपने किसी एक गुलाम का ये निकाह करवाना चाहता है, कहते हैं नहीं निकाह की इसको इजाजत नहीं, क्यों नहीं करवा सकता, वजह यह कि इसको तिजारत और पैसे कमाने की शरीयत ने इजाजत दी है, और निकाह करवाएगा ये तो गुलाम के अंदर ऐब पैदा कर रहा है, फिर तो ये उस कीमत पर नहीं बिकेगा भाई, फिर उस कीमत पर यह नहीं फरोख्त कर सकता उसको। बात समझ में आ गई। लिहाजा मुकातब अपने गुलाम का निकाह नहीं करवा सकता। अब मुकातब के गुलाम का किसी फजूली ने निकाह करवा दिया, मुकातब मुकातब का गुलाम है और किसी फजूली ने क्या किया, उसका निकाह करवा दिया। अब देखिए यह जो मुकातब का गुलाम है इसका यह निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, हालांकि फजूली का आकद मुनाकिद हो जाता है, इजाजत पर मौकूफ होता है, लेकिन यहां इसका मुजीज ही कोई नहीं है, ये मुकातब के गुलाम का निकाह करवाएगा तो कौन इजाजत देगा, मुकातब तो इजाजत दे नहीं सकता क्योंकि ये निकाह तो ऐब शुमार होता है, और मुकातब का जो असल मालिक था जिसके साथ मुकातब ने आकद किताबत किया था वो भी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि ये इसका गुलाम तो नहीं है, यह तो मुकातब का गुलाम है। तवज्जो है, लिहाजा मुकातब के गुलाम का निकाह कोई फजूली करवाता है तो यह मौकूफ होकर भी मुनाकिद नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मुजीज ही नहीं है। तो फजूली का अकद कब मुनाकिद होता है मौकूफ होकर? जब उसका कोई मुजीज हो, कोई इजाजत देने वाला हो। मालूम है मुजीज से मुराद कबूल करने वाला नहीं है बल्कि वो जो इस अकद की इजाजत देने वाला है वो मुराद है। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर कहते हैं फ़इन्ना कुल्ला अक़दिन सदरा मिनल फ़ुज़ूली, इसलिए क्योंकि हर ऐसा अक़द जो फजूली की जानिब से पेश आए यानी फजूली करवाए, व लहू मुजीज़ुन, और इस हाल में कि उस अक़द का कोई इजाजत देने वाला भी हो, इन अक़दा मौकूफ़न, तो ये वाला फजूली का अक़द मुनाकिद हो जाएगा मौकूफ होकर, अलल इजाजती, उस शख्स की इजाजत पर। وقال الشافعي رحمه الله تعالى, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं تصرفات الفضولي كلها باطلة, कि फजूली के सारे تصرفات باطل हैं। हमारे नजदीक तो फजूली किसी का निकाह करवाए या किसी की कोई ब्याह शिरा करवा दे वो मालिक की इजाजत पर मौकूफ है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, फजूली कोई अकद करवाए तो वो होता ही नहीं, वो सब बातिल हैं, उनका कोई एतबार नहीं है। वो फरमाते हैं भाई आपकी गाड़ी है, किसी को इजाजत नहीं है कोई और आपकी गाड़ी बेच दे। आपका निकाह है, किसी को इजाजत नहीं है आपकी इजाजत के बगैर आपका निकाह करवा दे। तो वो क्या फरमाते हैं, फजूली के सारे तसरुफात क्या हैं, बातिल। दलील सुना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो भी अकद किया जाता है वो उसके हुक्म के लिए किया जाता है। मसलन निकाह किस लिए किया जाता है, ताकि वो मर्द और औरत मियां बीवी बन जाएं, वो एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएं। तवज्जो है। इसी तरह बैअ की जाती है, बैअ किस लिए की जाती है, ताकि बैअ का हुक्म आ जाए कि मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाए। पहले बाय मालिक था, अब कौन बन गया, बैअ के बाद कौन मालिक बन जाता है, मुश्तरी मालिक बन जाता है। तो जो भी अकद किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, उस अकद के हुक्म के लिए। जो भी आकद किया जाता है उस आकद का, ताकि हुक्म आ जाए, निकाह करवाया जाएगा तो उसका हुक्म यह, आदमी और औरत मियां बीवी बन गए, एक दूसरे के लिए हलाल हो गए, और बैअ करेंगे तो मुश्तरी जो है मबीए का मालिक बन जाएगा। तो जो भी आकद किया जाता है वो उस आकद के हुक्म के लिए किया जाता है। और फजूली, फजूली के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो हुक्म को साबित ही नहीं कर सकता।
जी।
वो आपकी गाड़ी बेचकर आया तो क्या वो दूसरा आदमी गाड़ी का मालिक बना जिसके हाथ बेची है, नहीं, वो तो जब तक आप इजाजत नहीं देते, हमारे नजदीक भी आप इजाजत देंगे तो वो मालिक बनेगा। बात समझ में आ गई। तो फजूली जो है जब अकद करता है तो वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उस अकद के हुक्म को साबित कर सके, और अकद तो किया ही किस लिए जाता है, हुक्म के लिए। तो जब वो हुक्म कोई साबित नहीं कर सकता तो इस अकद का फायदा क्या हुआ, लिहाजा यह अकद का कोई एतबार नहीं, यह बातिल है। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं तसरुफात उल्फुजूली कुल्लुहा बातिलतुन, के फजूली के सारे तसरुफात बातिल हैं। लिअन्नल अक्द वुज़िअ लिहुक्मिही, इसलिए क्योंकि अकद जो है उसको वजा किया गया है, लिहुक्मिही उसके हुक्म के लिए। अकद का मकसद क्या होता है, वैसे ही जुबान हिलाना है या उसका हुक्म हासिल करना है, हुक्म हासिल करना है। तो कहते हैं लिअन्नल अक़्द वुज़िअ लिहुक्मिही, अक़द जो है उसको वज़ा किया गया है लिहुक्मिही उसके हुक्म के लिए। वल फुज़ूली ला यक़दिरु अला इस्बातिल हुक्मी, और फजूली कादिर नहीं है कि वो उस अक़द के हुक्म को साबित कर सके। फतलगू, तो लिहाजा वो अक़द क्या हो जाएगा, लगब हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। फजूली अक़द करवाएगा भी तो वह अक़द बेकार है, बातिल है, उसका कोई एतबार नहीं। वलाना, और हमारी दलील यह है अन्न रुकन तसरुफी सदर मिन अहलिही, हम कहते हैं कि फजूली जिसके लिए अकद कर रहा है दरअसल उसकी मदद कर रहा है। इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं और खैर के कामों में हमें एक दूसरे की मदद का हुक्म दिया गया है, तो फजूली दूसरे आदमी की चीज बेचकर गोया उसकी मदद कर रहा है या उसका निकाह करवा के उसकी मदद कर रहा है। और ये निकाह करवाया ये कोई उस पर लाजिम नहीं है, अगर उसको उसमें फायदा नजर आएगा इजाजत दे देगा, अगर फायदा नजर नहीं आएगा तो इजाजत नहीं देगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, फजूली के अकद को अगर मुनाकिद मान लिया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें तो उस आदमी का फायदा है भाई। अगर फायदा नहीं है नुकसान है तो वो इजाजत ही नहीं देगा। تو کہتے ہیں ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے, ان رکن تصرف صدر من اہلہ, کہ رکن تصرف صادر ہوا ہے, من اہلہ ای من اہل تصرفی, جو تصرف کا اہل ہے, مضافن الى محلہ, اس حال میں کہ منصوب ہے الى محلہ, اس تصرف کے محل کی طرف. بھئی دیکھیے, آزاد عاقل بالغ آدمی, اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے, وہ بیع و شیرا بھی کر سکتا ہے اور عقد بھی کر سکتا ہے, اسی طرح اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے, تو ہر قسم کے وہ عقد کر سکتا ہے. آزاد آدمی کو شریعت نے اختیار دیا ہے, تو معلوم ہوا آزاد عاقل بالغ آدمی فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اہل تصرف ہے, وہ تصرفات کر سکتا ہے. توجہ ہے, لہذا ایک آزاد عاقل بالغ آدمی نے جو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے, وہ کسی دوسرے کا نکاح بھی کروا سکتا ہے. توجہ ہے, تو فی ذاتی ہی اس میں اس تصرف کرنے کی صلاحیت موجود ہے, تو اس نے یہ تصرف کیا اور کس کے ساتھ نکاح کروایا, وہ جو نکاح کا محل ہے, یعنی وہ عورت جس کے ساتھ اس دوسرے آدمی کا نکاح ہو بھی سکتا ہے, کوئی محرم وغیرہ نہیں ہے, اس کی کوئی محرم نہیں, تو کس نے تصرف کیا؟ دیکھو نا, فضولی مثلا وہ آپ کا نکاح کرواتا ہے, آپ نے اس کو اجازت نہیں دی, لیکن بہرحال وہ فضولی کیا ہے, آزاد ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, فی ذاتی ہی اس میں صلاحیت ہے نکاح والا تصرف کرنے کی یا بیع و شراء والا تصرف کرنے کی. تو یہ جو فضولی ہے, یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اہل تصرف ہے, اس نے تصرف کیا اور تصرف بھی ایسی جگہ کیا جہاں آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, یعنی وہ عورت وہ آپ کی محرم نہیں ہے جسے نکاح کروا رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے اجنبیہ ہے. تو کس نے تصرف کیا؟ ایک اہل تصرف آدمی نے, جس میں فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے تصرف کی صلاحیت ہے, اس نے تصرف کیا. اور کس جگہ پر تصرف کیا؟ محل تصرف میں تصرف کیا ہے, یعنی وہ عورت آپ کے لیے محرم وغیرہ نہیں. تو جب ایک ایسا شخص جس میں تصرف کی صلاحیت ہے وہ تصرف کر رہا ہے, اور ایسی جگہ تصرف کر رہا ہے کہ وہ تصرف کا محل بھی ہے, وہ اس عورت سے آپ کا نکاح ہو بھی سکتا ہے اور نیز اس کے منعقد ہونے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے, تو وہ عقد منعقد ہو جائے گا, وہ عقد منعقد ہو جائے گا, البتہ موقوف رہے گا وہ صاحب تصرف کے اجازت پر, وہ موقوف رہے گا صاحب تصرف کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فضولی کیا ہے؟ وہ اہل تصرف ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, وہ آپ کا نکاح کروا رہا ہے تو آپ کی اجازت پر موقوف رہے گا. بھائی اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں, آپ کو فائدہ نظر آیا تو آپ اجازت دے دیں گے, آپ کو فائدہ نظر نہیں آیا تو آپ اس کو رد کر دیں گے. یہ مانا ہے ولنا, ہماری دلیل یہ ہے کہ نہ رکن تصرفی, کہ تصرف کا رکن جو ہے صدارہ وہ پیش آیا ہے, من اہلی ہی ای من اہل تصرفی, کس سے پیش آیا ہے؟ تصرف کا جو اہل ہے, یعنی فضولی کیا ہے؟ آزاد عاقل بالغ, اور ہر آزاد عاقل بالغ کیا ہے؟ وہ ہر طرح کا عقد کر سکتا ہے. اور دیکھو انہوں نے کہا انہ رکن تصرفی, تصرف کا رکن, دیکھو عقد نکاح کس چیز کا نام ہے؟ ایجاب اور قبول کا. کس کا؟ ایجاب بھی ہونا چاہیے, قبول بھی ہونا چاہیے. تو فضولی نے تو دونوں نہیں کیے ہوں گے, یا تو اس نے آپ کی طرف سے ایجاب کیا ہوگا یا آپ کی طرف سے قبول کیا ہوگا, ایک رکن اس نے ادا کیا ہے, دوسرا تو دوسرے فریق نے ادا کیا ہے. توجہ ہے, تو ایک رکن اس فضولی نے ادا کیا ہوگا, تو یہ جو رکن تصرف ادا کیا ہے کس نے ادا کیا؟ اہل تصرف نے, یعنی وہ آزاد عاقل بالغ آدمی جس میں نکاح کرنے اور کروانے کی صلاحیت ہے, اس نے کیا. اور کہاں پر کیا؟ محل تصرف میں, جہاں پر وہ تصرف ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بلانا, ہماری دلیل یہ ہے کہ ان رکن تصرفی, کے تصرف کا رکن جو ہے صدر من اہلہ, یہ پیش آیا ہے اہل تصرف کی طرف سے, یعنی وہ شخص جو اپنی ذات کے اعتبار سے تصرف کا اہل ہے, یعنی آزاد ہے, عاقل اور بالغ, تو رکن تصرف صادر ہوا ہے اہل تصرف سے, مضافن الى محلہ, اور یہ رکن تصرف جو ہے اس کی نسبت کی گئی ہے الى محلہ, محل تصرف کی طرف, یعنی وہاں جس کے ساتھ نکاح ہو हो सकता है, वो आपकी महरम वगैरह नहीं है, वला ज़रा रफ इन इक़ादिही, और कोई नुकसान भी नहीं है इस आकद के मुनाकिद होने में, फयन आकिदु मौकूफन, तो लिहाजा ये आकद मुनाकिद हो जाएगा मौकूफ होकर, हत्ता इदा रअ अल मसलहत फीही, यहां तक कि वो साहिब इजाजत अगर इसमें कोई मसलहत देखेगा, युनफिज़ुहू, तो वो इसको क्या कर देगा, नाफिज कर देगा, इजाजत दे देगा, वरना रद्द कर देगा। भाई बात समझ में आ गई। वक़द यतराखा हुक्मुल अक़्दि अनिल अक़्दि, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कौल का जवाब दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, फजूली का अकद मुनाकिद नहीं, क्योंकि अकद किस लिए किया जाता है, अकद के हुक्म के लिए, और फजूली तो अकद का हुक्म साबित नहीं कर सकता, लिहाजा उसका यह करना लगभ होगा। हम कहते हैं कि यूं न कहें कि हुक्म पाया ही नहीं जाता, फजूली ने अकद करवाया और फजूली अकद का हुक्म साबित नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हुक्म यहां मादूम नहीं है, हुक्म मुअख्खर हो गया है, और बाज औकात हुक्म अकद से मुअख्खर हो जाता है। अकद पाया जाता है लेकिन उसका हुक्म क्या हो जाता है, मुअख्खर हो जाता है। मसलन देखो, जब आप किसी से बैअ करते हैं, याद रखो जैसे ही आप ईजाब और कबूल करते हैं बैअ नाफिज हो गई। मसलन आपने गाड़ी खरीदी, ईजाब और कबूल करते ही आप गाड़ी के मालिक बन गए, और याद रखो ये बैअ ईजाब और कबूल करते ही ये बैअ नाफिज हो गई और लाजिम हो गई। नाफिज हो गई और लाजिम, लाजिम होने का मतलब यह है कि अब आप इस बैअ से रुजू नहीं कर सकते, अब आप इस बैअ को फसख नहीं कर सकते। हां बाय और मुश्तरी मिलकर फसख करना चाहें वो फसख कर सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दोनों में से एक जो है वो इस बैअ को फसख नहीं कर सकता। सिर्फ बाय चाहता है मैं बैअ को फसख कर दूं, नहीं भाई वो अकेला फसख नहीं कर सकता। सिर्फ मुश्तरी चाहता है मैं बैअ को फसख कर दूं, नहीं अकेला मुश्तरी नहीं कर सकता, बैअ लाजिम हो चुकी है। हां दोनों मिलकर फसख करना चाहें, भाई फिर तो आकद ही इन दोनों ने आपस में किया था, इनकी मर्जी है फसख कर दें। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा बैअ जब भी होगी वो लाजिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाजिम। क्या माना लाजिम का? कि दोनों में से कोई एक उसको फसख, दोनों मिलकर फसख कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक अकेला इसको फसख नहीं कर सकता। तवज्जो है? तो बैअ होने के बाद क्या हो जाती है? लाजिम। तवज्जो है? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इस सारे मसले की बुनियाद इसी पर है। तो बैअ हो जाने के बाद लाजिम हो जाती है, बाय और मुश्तरी में से सिर्फ कोई एक अकेला उसको फसख करना चाहे फसख नहीं कर सकता। हां दोनों मिलकर फसख करें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका अपना अकद है, आपस में किया था। और फिर मैंने आपको यहां इख्तियार शर्त के बारे में भी बतलाया था कि बाज औकात बाय या मुश्तरी में से कोई एक अपने लिए इख्तियार रख लेता है कि मैं इस बैअ को दो दिन में या तीन दिन में फसख करना चाहूं तो फसख कर सकता हूं, मैं इस बैअ को फसख करना चाहूं तो फसख। तो बाय और मुश्तरी आपस में कभी कभी बैअ कर लेते हैं, और दोनों में से कोई एक जो है वो इख्तियार रख लेता है कि मैं दो या तीन दिन में सोचूंगा, बैअ हम कर लेते हैं, लेकिन अगर मेरी राय न बनी तो मैं इस बैअ को फसख कर दूंगा। तो इसको खियार शर्त कहते हैं। यह खियार बाय भी रख सकता है, मसलन आपने एक चीज बेची है लेकिन आपको पता नहीं कि ये मैंने सही फैसला किया है या सही फैसला नहीं किया, आप अपने साथियों से मशवरा करना चाहते हैं तो आप बैअ तो कर लेते हैं लेकिन दो तीन दिन का अपने लिए खियार रख लेते हैं, तो आप उस मुद्दत के अंदर इस बैअ को फसख कर सकते हैं। और कभी ये खियार मुश्तरी रख लेता है तो वो भी उसकी मुद्दत के अंदर उस बैअ को फसख कर सकता है। तो याद रखो जब कोई शख्स खियार शर्त रख लेता है बाय या मुश्तरी, तो जब आपस में बैअ कर रहे हैं खियार शर्त के साथ तो बैअ मुनाकिद हो गई। बैअ क्या हो गई? मुनाकिद तो हो गई लेकिन ये बैअ लाजिम नहीं हुई। देखो दोनों में से एक के पास अभी भी फसख का इख्तियार है, हालांकि जब भी बैअ होती है बैअ नाफिज भी हो जाती है और लाजिम भी हो जाती है, लेकिन यहां पर बैअ का जो हुक्म है कि बैअ लाजिम नहीं हो रही, तो आकद तो पाया गया लेकिन खियार शर्त की वजह से बैअ लाजिम नहीं। तो आकद पाया गया लेकिन आकद का हुक्म अभी तक नहीं आया। या यूं कहो इमाम साहब के नजदीक मुश्तरी मबीए का मालिक भी नहीं बनता जब तक چاہے بائے خیار رکھے چاہے مشتری خیار رکھے. امام صاحب کے نزدیک جب خیار شرط رکھے چاہے بائے رکھے چاہے مشتری رکھے, مشتری مبیعے کا مالک ہی نہیں بنتا. اور بیع کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ مشتری مبیعے کا مالک بن جائے. تو دیکھو بیع پائی جا رہی ہے لیکن مشتری مالک ہی نہیں بن رہا. تو بات چل رہی تھی, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ اس کا حکم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, اور جب فضولی عقد کرے گا تو وہ تو حکم کو ثابت کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. حکم جب ثابت نہیں ہوگا تو عقد کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا عقد بیکار چلا گیا, بیکار ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یوں نہ کہیں کہ عقد پایا گیا اور اس کا حکم نہیں پایا گیا, بلکہ یوں کہیں کہ عقد پایا گیا اور اس کا حکم مؤخر ہو گیا. اور کبھی کبھار حکم مؤخر ہو جایا کرتا ہے, کبھی کبھار عقد کا حکم مؤخر ہو جاتا ہے. جیسے خیار شرط کے ساتھ بیع کی جائے تو عقد تو پایا گیا لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ مؤخر ہو گیا, مشتری اس کا مالک ہی نہیں بن رہا جب تک وہ اپنا خیار رد نہ کر دے یا وہ مدت نہ گزر جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح وہ بیع بھی لازم نہیں. تو لہذا عقد کے ہوتے ہی حکم کا فوراً پایا جانا ضروری نہیں, حکم کبھی کبھار مؤخر بھی ہو جاتا ہے. تو فضولی نے بھی جب نکاح کروایا ہے تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ حکم پایا ہی نہیں گیا, مشتری مبیعے کا مالک ہی نہیں بنا, یا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, وہ میاں بیوی بی بنے ہی نہیں, بلکہ ہم کہیں گے یہ نکاح اجازت پر موقوف ہے. تو دیکھو عقد نکاح پایا گیا اور اس کا حکم مؤخر ہو گیا, جب وہ دونوں اجازت دے دیں گے تو حکم بھی آ جائے گا. تو معلوم ہوا عقد سے کبھی کبھار حکم مؤخر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کس میں ہے؟ خیار شرط میں ہے. تو اسی طرح فضولی کے اندر بھی حکم مؤخر ہو گیا ہے, یوں نہ کہیں حکم پایا ہی نہیں گیا بلکہ حکم کیا ہو گیا؟ مؤخر ہو گیا ہے. جیسے کس میں تھا؟ خیار شرط میں. تو کہتے ہیں وقد یتراخا حکم العقد عن العقد, اور کبھی کبھار عقد کا جو حکم ہوتا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے, عن العقد عقد سے, عقد ہو جاتا ہے لیکن اس کا حکم مؤخر ہو جاتا ہے, وہ بعد میں آتا ہے. جیسے کس میں ہے؟ خیار شرط میں ہے. تو جیسے خیار شرط میں حکم مؤخر ہو سکتا ہے, اسی طرح فضولی جب عقد کروائے گا اس میں بھی حکام مؤخر ہو جائے گا. اچھا یہاں پر دیکھیے ایک اور قیمتی بات یہاں یاد رکھیے بھائی, یہ جو اوپر مسئلہ ذکر ہوا و تزویج العبدی والاماتی بغیر اذن مولاہما موقوفن, میں نے کیا ترجمہ کیا کہ غلام یا باندی کا نکاح آقا کے علاوہ کوئی اور فضولی کروا دے. توجہ ہے جی. جبکہ اردو کی جتنی شروحات اٹھائیں انہوں نے اس میں دو صورتیں داخل کی ہیں, کہ غلام یا باندی کا نکاح کوئی فضولی کروائے یا غلام یا باندی خود اپنا نکاح کر دیں. غلام یا باندی خود اپنا نکاح کر دیں تو بھی یہ کس کی اجازت پر موقوف ہے؟ آقا کی اجازت پر. تو غلام یا باندی کا نکاح چاہے فضولی کروائے چاہے یہ خود کروائیں, دونوں صورتیں اس میں داخل کی ہیں اردو شروحات والوں نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن عربی شروحات والوں نے یہ صورت ذکر نہیں کی, بلکہ انہوں نے اس کی تفصیل زیادہ بیان ہی نہیں کی. لیکن ظاہر یہی ہے عبارت سے کہ یہاں غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں اس صورت کو داخل نہ کیا جائے. غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں وہ صورت یہاں داخل نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ جو صاحب ہدایہ نے آگے ذکر کیا, ہماری دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ تَصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ, کہ یہ جو تصرف کا رکن ہے یعنی ایجاب یا قبول, یہ صادر ہوا ہے من اہلہ, اہل تصرف سے. اہل تصرف کون تھا؟ فضولی. فضولی کس طرح تھا اہل تصرف؟ وہ آزاد تھا, عاقل تھا, بالغ تھا. اور جو بھی آزاد عاقل بالغ ہو وہ اہل تصرف ہوتا ہے, اس کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے. یہ صاحب ہدایت دلیل ذکر فرما رہے ہیں دونوں مسئلوں کی. توجہ ہے؟ تو اگر غلام یا باندی اپنا نکاح خود کریں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بھائی. غلام یا باندی میں تو اہلیت ہی نہیں ہے, وہ تو اپنا نکاح کر ہی نہیں سکتے. اور صاحب ہدایت کیا فرما رہے ہیں؟ سادار مین اہلی ہی, آئی مین اہل تصرفی, اہل تصرف نے ایجاب یا قبول کیا ہے. توجہ ہے؟ اور غلام یا باندی وہ تو اہل تصرف ہی نہیں, لہذا وہ صورت یہاں داخل نہیں کی جا سکتی کہ غلام یا باندی خود اپنا نکاح کروائیں. توجہ ہے؟ وہ یہاں داخل نہیں. اور نیز متن میں بھی دیکھیں وہ تزویج العبدی, تزویج کا لفظ آیا, تزویج کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کا نکاح کروانا. معلوم ہوا کوئی فضولی ہے جو غلام یا باندی کا نکاح کروا رہا ہے. اگر غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں تو پھر تزویج کا لفظ نہیں ہونا چاہیے, تزوج کا لفظ ہونا چاہیے. تزوج العبد والامتی, غلام یا باندی کا خود نکاح کرنا, یہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے. توجہ ہے, معلوم ہوا یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ صورت ذکر ہو رہی ہے کہ جب غلام یا باندی کا نکاح کوئی فضولی کروائے, خود غلام یا باندی اپنا نکاح کریں وہ یہاں ذکر نہیں, اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایک تو متن میں تزویج کا لفظ آیا ہے, تزویج کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا نکاح کروانا, معلوم ہو کسی دوسرے نے ان کا نکاح کروایا ہے, اور نیز آگے جو دلیل ذکر کی کہ ان رکن تصرف صدر من اہلہ, کہ یہاں رکن تصرف اہل تصرف سے صادر ہوا ہے, اور غلام اور باندی وہ تو اہل تصرف ہی نہیں, ان کو تو نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے, ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہے. توجہ ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو غلام یا باندی اپنا نکاح کروائیں وہ اس عبارت کے تحت داخل نہیں. ہاں البتہ یاد رکھنا حکم اس کا بھی یہی ہے, وہ اس عبارت کے تحت تو داخل نہیں لیکن حکم اس کا بھی یہی ہے, غلام یا باندی اپنا نکاح کروائیں گے تو وہ آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا. جیسے فضولی کسی کا نکاح کرواتا ہے حالانکہ فضولی کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ نکاح کروانے کا, اسی طرح یہ غلام یا باندی جب اپنا نکاح کریں گے تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے اپنا نکاح کروانے کا, تو یہ بھی کیا ہوئے, فضولی ہی ہو گئے. کیا ہو گئے, فضولی ہو گئے. لہذا یہ خود اپنا نکاح کریں گے تو وہ بھی آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو غلام یا باندی اپنا نکاح خود کرتے ہیں وہ اس مسئلے کے تحت داخل نہیں, البتہ حکم اس کا بھی یہی ہے. آگے دیکھیے, وَمَنْ قَالَ أَشْهِدُ أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ قَالَ آخَرُ أَشْهِدُ أَنِّي زَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتْ جَازَ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ. فضولی کے بارے میں بات چل رہی ہے. بھئی دیکھو, فضولی کسی کا نکاح کرواتا ہے, یہاں آگے تین صورتیں ذکر ہوں گی. ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے وہ دونوں طرف سے فضولی بن رہا ہے.
جی.
توجہ ہے, تو ایک ہی شخص نکاح کا متولی بن گیا اور وہ دونوں طرف سے فضولی ہے. دوسری صورت, ایک ہی شخص دونوں طرف سے نکاح کا متولی بن رہا ہے لیکن ایک طرف سے وہ فضولی ہے اور ایک طرف سے مثلا وہ اصیل ہے, اپنا ہی نکاح کروا رہا ہے.
جی.
توجہ ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دو الگ الگ فضولی نکاح کرواتے ہیں. کتنی صورتیں بن گئیں, تین. دو صورتوں میں نکاح کا متولی ایک ہی شخص ہے, اور پہلی صورت میں دونوں طرف سے وہ فضولی ہے, نہ لڑکی والوں نے اس کو کہا ہے نہ لڑکے والوں نے کہا ہے, دونوں طرف سے فضولی ہے, ایک ہی آدمی ہے. اور دوسری صورت کیا, ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہے لیکن ایک طرف سے وہ فضولی ہے, ایک طرف سے اصیل ہے, یعنی اپنا نکاح وہ کر رہا ہے مثلا کسی عورت سے, حالانکہ اس عورت نے اس کو وکیل وغیرہ نہیں بنایا, یہ دو گواہوں کے سامنے کہتا ہے میں نے اپنا نکاح فلانی عورت سے کر دیا. توجہ ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دو فضولی ہیں دو الگ الگ افراد کی طرف سے, ایک عورت کی طرف سے فضولی ہے اور ایک مرد کی طرف سے فضولی ہے. تو اس میں یاد رکھنا طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کا متولی ایک ہی شخص ہو تو وہ کسی جانب سے فضولی نہیں ہونا چاہیے. جب نکاح کا متولی ایک ہی شخص ہو تو وہ کسی جانب سے فضولی نہیں, لہذا ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی ہوا تو کہتے ہیں یہ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا.
جی.
یا ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرواتا ہے, خود اصیل ہے اور عورت کی طرف سے کیا ہے فضولی, تو ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہوا, کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں. ہاں اگر دونوں طرف سے فضولی ہیں تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور ان کی اجازت پر موقوف رہے گا.
جی.
توجہ ہے.
جی.
یا چوتھی صورت دیکھ لو, एक शख्स अपना निकाह करवाना चाह रहा है किसी औरत से और औरत की तरफ से एक फजूली है, यह शख्स असील है अपना निकाह करवा रहा है और औरत की तरफ से एक फजूली है, इसने ईजाब किया और फजूली ने कबूल कर लिया, यह क्या कहता है मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया, और वह दूसरा शख्स क्या कहता है मैंने फुलानी की तरफ से कबूल कर लिया। बात समझ में आ गई? तो गोया कुल चार सूरतें हो गई भाई। क्या या तो एक ही फजूली होगा दोनों जानिब से, यह भी तरफैन के नजदीक जायज नहीं। जब एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली हो तो वो किसी तरफ से फजूली नहीं होना चाहिए, या वो असील होना चाहिए या वकील होना चाहिए या वली होना चाहिए भाई, तवज्जो है। लिहाजा एक ही शख्स दोनों जानिब से निकाह का मुतवल्ली हो तो किसी तरफ से वो फजूली ना हो, लिहाजा अगर एक ही शख्स दोनों तरफ से फजूली है यह सूरत भी तरफैन के नजदीक जायज नहीं। अगर एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली है, एक तरफ से तो असील है वो अपना निकाह कर रहा है और दूसरी तरफ से वो क्या है फजूली है, तो भी इस सूरत में भी यह निकाह जायज नहीं, ये निकाह मुनक़िद नहीं होगा। हां अगर दो फजूली हैं दोनों तरफ से अलग अलग और वो इजाब और कबूल करते हैं तो तरफैन फरमाते हैं ये सूरत सही है, ये इजाब और कबूल दोनों पाए जा रहे हैं, ये निकाह मुनक़िद होगा, अलबत्ता मौकूफ रहेगा जिनका निकाह करवाया गया उनकी इजाजत पर। और चौथी सूरत यह है कि एक तरफ से असील है अपना निकाह करवा रहा है और दूसरी तरफ से कबूल करने वाला एक फजूली है भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स जब निकाह का मुतवल्ली हो तो वो फजूली हो सकता है। तरफैन क्या फरमाते हैं जब एक शख्स निकाह का मुतवल्ली हो तो वो फजूली नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से भी फजूली ना हो और एक तरफ से भी फजूली ना हो। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जब एक शख्स निकाह का मुतवल्ली बन रहा हो तो वो एक तरफ से या दोनों तरफ से फजूली भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, वमन काला, और जिस शख्स ने कहा अशहीदू, भाई शहीदा यशहदू का माना है गवाह बनना और अशहदा युशहीदू का माना है गवाह बनाना, कोई शख्स बाकी लोग जो उसके पास मौजूद है उनको गवाह बना रहा है। तवज्जो है, एक शख्स अपना निकाह किसी औरत से कर रहा है और जो उसके आसपास बैठे हैं उनको मुखातब होकर क्या कहता है अशहीदू, तुम लोग क्या बन जाओ गवाह बन जाओ। तो मवमन काला, और जिस शख्स ने कहा अशहीदू तुम लोग गवाह बन जाओ, अन्नी कद तज़व्वजतु फुलानता, कि तहकीक मैंने फुलानी औरत से निकाह कर लिया, फुलानी औरत से निकाह कर लिया। अब देखो ये किसका निकाह कर रहा है, अपना, तो खुद तो क्या हुआ असील और औरत की तरफ से क्या हुआ फजूली हुआ। तो एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली है और एक जानिब से असील है तो दूसरी जानिब से फजूली, तो तरफैन क्या फरमाते हैं कि यह निकाह मुनक़िद नहीं होगा। तवज्जो है, तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा अशहीदू तुम लोग गवाह हो जाओ, अन्नी कद तज़व्वजतु फुलानता, कि मैंने तहकीक फुलानी औरत से निकाह कर लिया। मालूम हुआ दोनों तरफ से उसने एक ही जुमला बोला है, कोई कबूल करने वाला और नहीं है। फबलगहल खबरू, फिर यह खबर उस औरत को पहुंची, फअजाजत उसने इजाजत दे दी, फहुआ बातिलुन, तो यह निकाह क्या है बातिल, अगरचे वो इजाजत दे रही है लेकिन तरफैन क्या फरमाते हैं जब एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली हो दोनों तरफ से तो उसको फजूली नहीं होना चाहिए, और यह तो एक जानिब से क्या था फजूली था, लिहाजा इजाजत वो दे रही है फिर भी नहीं, वो निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? दूसरी सूरत, एक आदमी ने कहा तुम लोग गवाह हो जाओ मैंने फुलानी औरत से अपना निकाह कर दिया, उसी मजलिस में एक और आदमी बोलता है, कहता है कि तुम लोग गवाह हो जाओ मैंने फुलानी का निकाह इस आदमी से कर दिया। अब एक असील है अपना निकाह करवा रहा है और औरत की तरफ से कौन आ गया फजूली आ गया, लिहाजा अब यह निकाह मुनक़िद होगा, अलबत्ता इस औरत की इजाजत पर मौकूफ है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह इन काला आखरू, और अगर किसी दूसरे आदमी ने उसी मजलिस में कहा, पहले ने क्या कहा था अशहदु अन्नी कद तज़व्वजतु फुलाना था, वह इन काला आखरू, और अगर दूसरे आदमी ने जवाब में कहा अशहदु अन्नी ज़व्वजतु हामिन हूं, कि तुम लोग गवाह हो जाओ मैंने उस औरत का इस आदमी से निकाह कर दिया, फबलगा हल खबरू, तो उस औरत को यह खबर पहुंची, फअजाजत, तो उस औरत ने इजाजत दे दी, जाजा, तो यह निकाह जायज। तवज्जो है, आगे दलील आएगी, दलील आएगी। तरफैन फरमाते हैं कि अक़्द-ए-निकाह के लिए ईजाब भी चाहिए और कबूल भी चाहिए। پہلے مسئلے میں وہ شخص نکاح کا ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی تھا، اپنے لیے اصیل تھا تو عورت کے لیے کیا تھا؟ فضولی۔ لہذا جب اس نے کہا میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا تو یہ تو صرف ایجاب ہے، یہ تو صرف
ایجاب،
اور نکاح صرف ایجاب سے منعقد ہوتا ہے یا قبول بھی چاہیے؟
قبول،
تو اس مجلس میں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ بعد میں وہ عورت جا کر اجازت دے رہی ہے کسی اور وقت کے اندر، تو بھائی ایجاب تو مجلس تک رہتا ہے، مجلس کے بعد ایجاب نہیں رہتا، لہذا اب وہ اجازت دے بھی تو بھی نکاح منعقد نہیں۔ لیکن جبکہ دوسری صورت، جب ایک آدمی نے کہا میں نے فلانی سے نکاح کر دیا اپنا، وہ اصیل ہے، اور دوسری طرف سے ایک فضولی بولا کہ میں نے اس عورت کا تم سے نکاح کر دیا، تو ایجاب بھی پایا گیا اور قبول بھی پایا گیا، لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوا، البتہ اس عورت کی اجازت پر موقوف ہو گیا، اور پھر اس عورت نے اجازت دے دی تو اب نکاح کیا ہو گیا؟ منعقد ہو گیا، نافذ ہو گیا، یہ میاں بیوی بن گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے فبلغ الخبر، تو اس عورت کو خبر پہنچی، فاجازت، تو اس نے اجازت دے دی، جازت تو یہ جائز ہے، یعنی یہ نکاح جائز ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، اور اسی طرح ہے اگر وہ عورت ہے جس نے یہ سارا کہا ہے، یہ سارا کہنے والی اگر عورت ہے، مثلا عورت کے پاس کئی افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور عورت ان کے سامنے کہتی ہے کہ گواہ رہو میں نے فلاں آدمی سے اپنا نکاح کر دیا، توجہ ہے
جی،
اب دیکھو یہ اپنا نکاح کر رہی ہے تو اصیل ہے، اور اس آدمی کی طرف سے یہ کیا ہے؟ عورت فضولی ہے، اس نے تو اس کو نکاح کا نہیں کہا، لہذا بعد میں وہ آدمی اجازت دے بھی تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہوا دونوں طرف سے، وہ عورت خود اصیل ہے اور آدمی کی طرف سے کیا ہے؟ فضولی۔ اور جب ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہو تو اس کو کسی طرف سے فضولی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تو ایک طرف سے فضولی ہے، لیکن اگر اسی عورت نے یوں کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اس آدمی سے اپنا نکاح کر دیا، اور مجلس کے اندر ہی ایک آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اس آدمی کی طرف سے نکاح قبول کر لیا، تو اب عورت ہوئی اصیل اور وہ آدمی کیا ہوا؟ فضولی۔ وہ آدمی کیا ہوا؟ فضولی۔ تو یہ دونوں الگ الگ افراد ہیں، تو اس صورت میں یہ نکاح موقوف ہو کر منعقد ہو گیا۔ اب وہ آدمی اجازت دے دے گا تو نافذ بھی ہو جائے گا، یا میاں بیوی بن جائیں گے، اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو نافذ نہیں ہوگا۔ یہ مانا ہے وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، اور اسی طرح ہوگا مسئلہ اگر وہ عورت ہے جس نے یہ سارا کچھ کہا ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی، یہاں اوپر متن میں آیا وَمَنْ قَالَ أَشْهِدُ أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَتَ، بھئی یاد رکھو یہ فلانتا یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، عموماً طلباء اس کو منصرف پڑھتے ہیں، فلانتن تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بھئی آپ کی کتاب میں تنوین ہے کہ نہیں فلانتن پر؟ بعض کتابوں میں باقاعدہ تنوین لکھی گئی ہے، تو یاد رکھو یہ رائج غلطی ہے بھئی، یہ غیر منصرف ہے، یہ منصرف نہیں، تو جو ہے، اور اس میں دو سبب ہیں غیر انصراف کے، ایک تو یہ عالم کے درجے میں ہے، یاد رکھو یہ فلاں اور فلانا یہ کنایا ہوتا ہے عالم سے، جب آپ کسی کے سامنے کسی کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے تو پھر فلاں یا فلانا کا لفظ بولتے ہیں، مثلا آپ اپنے ساتھی سے زید کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ زید میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کا اکرام کیا، اور پھر زید نے یوں کہا اور میں نے یوں کہا، تو آپ زید کا ذکر کر رہے ہیں، اتنے میں ایک تیسرا آدمی آپ کی مجلس میں آ گیا، اب آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں زید کی بات کر رہا تھا، تو اب آپ زید کے بجائے فلاں کہیں گے، تو پھر فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا اور میں نے یہ جواب دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھو، اب آپ وہ نام کے بجائے فلاں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو فلاں اور فلانا کے لفظ ہیں یہ کنایا ہوتے ہیں علم سے، علم کی جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو جب یہ علم سے کنایا ہے تو یہ علم ہی کے درجے میں ہیں، کس کے درجے میں؟ علم، چنانچہ اسی لیے ان پر الف لام بھی داخل نہیں کرتے، فلان اور فلانا پر अलिफ लाम भी दाखिल नहीं करते। तो ये अलम के दर्जे में है। तुम बात चल रही थी फुलानता की, मैंने बताया एक तो ये इसमें अलमियत है, ये अलम के दर्जे में है, और दूसरा इसमें ये ताय तानीस भी साथ जुड़ी हुई है, तो दो सबब आ गए, अलमियत और तानीस, इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। तो ये गैर मुनसरिफ है। और हवाला भी याद रखो भाई, हवाला भी याद रखो, अल्लामा रज़ी, अल्लामा रज़ी जिन्होंने काफिया की अजीम शरह लिखी है भाई, काफिया की दो शरहें निहायत अजीम हैं, एक शरह जामी और एक अल्लामा रज़ी की शरह है जो काफिया की, बड़ी गहरी बातें वो जिक्र फरमाते हैं। तो अल्लामा रज़ी जिक्र फरमाते हैं इस बात को कि ये फुलानता गैर मुनसरिफ है, और वो ये जिक्र फरमाते हैं काफिया की जो शरह है उसमें दूसरी जिल्द में सफा 110 पर, दूसरी जिल्द में सफा 110 पर वो ये जिक्र फरमाते हैं। और आजकल तो मुख्तलिफ मकतबों के छापे होते हैं, तो हो सकता है सफे आगे पीछे हो जाएं, किसी को हवाला ना मिले, तो याद रखें कि काफिया के अंदर जहां साहिबे काफिया मारिफा और नकेरा की बहस शुरू करते हैं वहां वो आलम की तारीफ करते हैं। मारिफा के अंदर वो किसको जिक्र करते हैं? आलम को, आलम की तारीफ करते हैं। तो इस मकाम पर जो अल्लामा रज़ी ने शरा की है आलम की, आलम के बारे में बातें जिक्र की हैं, वहां उन्होंने ये जिक्र फरमाया है कि फुलानता ये गैर मुनसरिफ है। और नीज ये भी जिक्र फरमाया है कि चूंकि मारिफा है फुला और फुलानता, लिहाजा इसलिए इन पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो आपने इस पर तनवीन नहीं पढ़नी, गैर मुनसरिफ पढ़ना है भाई। अशिदु अन्नी कद तज़व्वजतु फुलानता, बात समझ में आ गई भाई जी। आगे देखिए, कहते हैं वहादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मद रहिमहुमल्लाहु ताला, कहते हैं ये सारा जो हमने जिक्र किया ये तरफैन के नजदीक है। पहली सूरत में जब उस आदमी दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली हुआ था, खुद असील था और औरत की तरफ से फजूली था, तो वो निकाह बातिल होगा। और दूसरी सूरत में जब दो अलग अलग फजूली हैं निकाह मुनक़िद हो जाएगा। ये किसके नजदीक है? तरफैन के नजदीक। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं इदा ज़वजत नफ्सहा गाइबन, जब औरत ने निकाह किया अपनी जात का गाइबन किसी गायब आदमी से, फबलगहु तो उस आदमी को यह खबर पहुंची, फअजाज़ा तो उस आदमी ने इजाजत दे दी, जाज़ा तो ये निकाह जायज है। औरत ने निकाह किया, खुद क्या है, किसका निकाह कर रही है औरत? अपना, तो खुद क्या हुई? असील। और उस आदमी की तरफ से क्या हुई? फुजूली। तो इमाम यूसुफ फरमाते हैं निकाह मुनाकिद हो जाएगा। इसी तरह अगर मर्द था, तवज्जो है, मर्द ने अगर निकाह किया, किसका निकाह किया? अपना, तो खुद क्या हुआ? असील। और औरत की तरफ से वही मर्द क्या है? फुजूली। तवज्जो है भाई, तरफैन तो फरमाते हैं एक ही शख्स जब निकाह का मुतवल्ली हो तो उसको फुजूली नहीं होना चाहिए किसी तरफ से भी जी। अगर वो दोनों तरफ से फुजूली हुआ तो भी निकाह बातिल, अगर एक तरफ से फुजूली हुआ तो भी निकाह बातिल। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर एक मर्द ने किसी औरत से निकाह किया है और वही मर्द निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली है, अपना निकाह कर रहा है औरत के साथ, तो खुद हुआ असील, औरत के लिए क्या हुआ? फुजूली। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं ये निकाह मुनक़िद हो जाएगा, वो औरत इजाजत देगी तो निकाह जायज हो जाएगा। और इसी तरह अगर औरत ने किसी आदमी से निकाह किया, औरत अपने लिए क्या हुई? असील, और उस आदमी के लिए क्या हुई? फजूली, और वो आदमी बाद में इजाजत दे देता है तो ये निकाह मुनक़िद हो जाएगा। तरफैन के नजदीक मुनक़िद नहीं होगा और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुनक़िद हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने कहा ना, वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इजा ज़वजत नफ्सहा गाइबन, औरत ने अपना निकाह किया किसी गायब आदमी से, तो इसका यह मतलब नहीं है जो औरत के मसले में यह बतला रहे हैं। पीछे चूंकि बात आखिर में औरत की चल रही थी, बात समझ में आ गई, औरत ही असील भी है और फजूली भी है, तो उसको जिक्र कर दिया। मर्द में भी यही हुक्म है, मर्द ही असील भी हो और फजूली भी हो तो फिर वह निकाह क्या हो जाएगा? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुनाकिद हो जाएगा। वहासिलु हाजा, और इस इख्तिलाफ का हासिल यह है अन्नल वाहिदा ला यसलुहु फुजूलियन मिनल जानिबैनी, कि एक ही आदमी तरफैन के नजदीक एक ही आदमी ला यसलुहु, वो सलाहियत नहीं रखता फुजूलियन कि वो फजूली बने मिनल जानिबैन दोनों तरफ से। इधर देखिए मैंने क्या जाब्ता बताया, एक ही आदमी अगर निकाह का मुतवल्ली बनेगा तो वो किसी एक तरफ से भी फजूली नहीं, अगर वो एक तरफ से फजूली हुआ या दोनों तरफ से फजूली हुआ तो ये निकाह मुनाकिद नहीं होगा। वही बयान कर रहे हैं वह हासिल हाजा, और इस इख्तिलाफ का हासिल यह है कि अन्नलवाहिद ला यसलुहु फजूली मिनल जानिबैनी, और इस इख्तिलाफ का हासिल यह है कि एक आदमी वो सलाहियत नहीं रखता कि वो फजूली बन जाए दोनों जानिब से, अब फजूली या मिन जानिबिन व असील मिन जानिबिन, या एक जानिब से तो वो फजूली बन रहा हो और एक जानिब से वो असील बन रहा हो, ये वो सलाहियत नहीं रखता। इंदहुमा तरफैन रहमहुमल्ला के नजदीक, खिलाफ अल्लाहू बखिलाफ इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के, उनके नजदीक एक ही आदमी दोनों जानिब से फजूली बन सकता है या एक जानिब से असील और दूसरी जानिब से फजूली एक ही आदमी बन सकता है। भाई आगे देखिए भाई, वलाउ जरल अक्दु बैनल फजूलियैनी, और अगर यह अक्द जारी हुआ दो फजूलियों के दरमियान, जी अगर दो फजूलियों में हो फिर अक्द होगा या नहीं? फिर तो अक्द हो जाएगा। अभी तो बताया एक ही आदमी अगर निकाह का मुतवल्ली हो फिर उसको किसी तरफ से फजूली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों फजूली अलग अलग हैं फिर तो एक आदमी निकाह का मुतवली ना हुआ, फिर तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता इजाजत लेना पड़ेगी। तो ये माना है वला जरल अक्दु बैनल फजूलियैन, और अगर ये अक्द जारी हुआ दो फजूलियों के दरमियान, औ बैनल फजूली वल असील, या एक फजूली और एक असील, मसलन आदमी ने कहा था मैंने अपना निकाह कर दिया तो यह है असील, और उसी मजलिस में एक आदमी कहता है मैंने उस औरत की तरफ से कबूल कर लिया तो यह क्या हुआ? फजूली। एक असील है और एक फजूली है, फिर तो अलग अलग हैं दोनों, फिर तो निकाह मुनकिद हो जाएगा, अलबत्ता इजाजत पर मौकूफ रहेगा। यह माना है। फिर देखिए इबारत कहते हैं वलाउ जरल अक्दु बैनल फजूलियैन, और यह अगर अक्द जारी हुआ दो फजूलियों के दरमियान, औ बैनल फजूली वल असील, या एक फजूली है और एक असील है उनके दरमियान यह अक्द जारी हुआ, जाज बिल इजमा, तो यह बिल इतफाक जायज है। बिल इजमा का क्या माना? हमारे तीनों अइमा का इतफाक मुराद है, बिल इजमा आई बिल इतफाक भाई, तो यह बिल इतफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक जायज है। हुआ यकूलु, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अब उनकी दलील आ गई, लौकान मामूरन मिनल जानी बैनी यनफुजू, अगर यह मामूर होता दोनों जानिब से तो निकाह नाफिज हो जाता। इधर देखिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील भाई, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे एक शख्स जब दोनों तरफ से वकील बन जाए एक ही आदमी, तो वो दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली हुआ, अब वो दो गवाहों के सामने कह दे मैंने फुलानी का फुलां से निकाह कर दिया, तो इससे क्या होता है? निकाह मुनकिद हो जाता है। तो जैसे एक आदमी जब दोनों तरफ से वकील होता है, वो जब एक जुमला बोलता है कि मैंने फलां का फलानी से निकाह कर दिया, तो वो निकाह मुनाकिद हो जाता है। इसी तरह अगर एक ही शख्स दोनों जानिब से फजूली होकर यह जुमला कहेगा तो निकाह उसी तरह मौकूफ रहेगा, जैसे फजूली का निकाह मुनाकिद होकर क्या होता है? मौकूफ रहता है, तो यह निकाह भी मुनाकिद होकर मौकूफ रहेगा। क्या बात हुई? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस फजूली को कियास करते हैं वकील पर। एक ही शख्स मसलन दोनों तरफ से वकील बन गया निकाह का, लड़की वालों ने भी जैद को अपना वकील बनाया, लड़के वालों ने भी जैद को अपना वकील बनाया, तो ये देखो दोनों जानिब से वकील हुआ, दोनों जानिब से मामूर हुआ। अमर का क्या माना? हुक्म। मामूर जिसको हुक्म दिया गया यानी जिसको वकील बनाया गया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक ही शख्स दोनों तरफ से वकील होकर निकाह का मुतवल्ली हो सकता है, और ये निकाह करवाता है तो जब गवाहों के सामने ये वाला वकील सिर्फ इतना कह दे मैंने फुलानी का फुलां से निकाह कर दिया, तो वह निकाह मुनकिद हो जाता है
जी।
तो दोनों तरफ से एक ही आदमी जब मामूर हो यानी वकील हो तो उसके कहने से निकाह मुनाकिद हो जाता है। तो इसी तरह अगर दोनों तरफ से एक ही आदमी फजूली बनेगा तो निकाह फिर भी होना चाहिए, अलबत्ता इजाजत पर मौकूफ रहेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं हुआ यकूल, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं लौकान मामूरम मिनल जानिबैनी, कि अगर ये शख्स जो निकाह करवाने वाला है ये अगर मामूर हो दोनों जानिब से, यानी दोनों तरफ से इसको हुक्म दिया गया है, लड़की वालों ने भी इसको हुक्म दिया हमारे लड़की का निकाह करवा दो और लड़के वालों ने भी हुक्म दिया कि उस लड़की से इस लड़के का निकाह करवा दो, तो ये वकील जो है लौकाना मामूरम मिनल जानिबैनी, अगर ये निकाह करवाने वाला दोनों जानिब से मामूर हुआ यानी वकील हुआ, यनफुजु, तो इसके कहने से जैसे निकाह नाफिज हो जाता है, फइदा कान फुजूलियन, तो अगर ये दोनों तरफ से फुजूली है तो ये तवक्कफ हो, तो इसका निकाह मौकूफ होना चाहिए। एक शख्स दोनों जानिब से निकाह का मुतवल्ली हो सकता है, अगर दोनों तरफ से वकील है तो निकाह नाफिज हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ से फुजूली है तो निकाह मौकूफ रहेगा, निकाह होना चाहिए। तवज्जो है, मालूम हुआ वो इस फुजूली को किस पर कयास करते हैं, वकील पर। जैसे वकील दोनों जानिब से एक ही शख्स मुतवल्ली हो सकता है, इसी तरह फुजूली भी एक ही शख्स दोनों जानिब से हो सकता है। बात समझ में आ गई। कहते हैं वसारा कल खुलई व तलाक वल एताक अला मालिन, और ये इसी तरह हो गया जैसे खुला है और तलाक है और एताक है अला माल। भाई इनको समझ लें, खुला खुलउन, खुला इसको कहते हैं कि औरत जो है वो खावन से अपनी जान छुड़ाती है माल देकर। कोई औरत है अपने खावन से तंग है, वो उसे जान छुड़ाना चाहती है, तो औरत उसको कहती है कि मुझसे खुला कर लो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे देती हूं, तो इसको खुला कहते हैं, यानी औरत का पैसे देकर खावन से अपने आप को छुड़वाना। और याद रखो इसमें तलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बस औरत कहेगी मैं खुला करती हूं, या खावन कह देता है मैं क्या करता हूं, खुला करता हूं, तो इसके अंदर हमेशा औरत पर माल आता है और इसमें तलाक का लफ्ज नहीं होता। हां अलबत्ता होता यह तलाक के हुक्म में है, जब जुदाई आ जाएगी, औरत ने कहा और मर्द ने कबूल कर लिया, औरत ने क्या कहा कि मुझसे 10 लाख रुपए ले लो और मुझसे खुला कर लो, खावन ने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही खावन ने कबूल कहा साथ ही मर्द और औरत में जुदाई आ गई, अब उस औरत के जिम्मे वो पैसे आ गए, वो उसको अदा करने पड़ेंगे। तवज्जो है, तो इसके अंदर देखो तलाक का लफ्ज बोला तो नहीं गया, अलबत्ता हुक्म तलाक वाला ही है, ये एक तलाक बाइन के हुक्म में है, तवज्जो है। लेकिन अगर इसके बजाय तलाक का लफ्ज बाकायदा औरत जिक्र करती है या मर्द जिक्र करता है, औरत कहती है कि मुझसे 5 लाख ले लो और मुझे तलाक दे दो, खुला का लफ्ज नहीं बोलती, क्या कहती है 5 लाख ले लो और मुझे तलाक दे दो, तो इसको तलाक आला इवज कहते हैं, इवज लेकर तलाक दी, तो यह भी तलाक बाइन के हुक्म में है, मियां बीवी में जुदाई आ जाएगी, तो खुला में भी खावंद और बीवी में जुदाई और बीवी पर माल आएगा, लेकिन इसमें तलाक का लफ्ज नहीं होगा। और तलाक आला माल इसके अंदर भी माल लेकर तलाक देता है खावंद, बात समझ में आ गई। और एक है एताक आला माल, कि आका अपने गुलाम को कहता है कि मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए के बदले आजाद किया, गुलाम कहता है मुझे कबूल है, जैसे ही गुलाम ने कबूल कहा साथ ही वो आजाद हो गया, लेकिन अब उसको वो 10 लाख रुपए लाकर आका को देने पड़ेंगे। तो ये देखो एताक आला माल है, एताक आला इवज है, आजाद किया है इवज और माल लेकर, तवज्जो है। तो खुला में भी औरत क्या देती है, माल, अलबत्ता खुला के अंदर तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं होता, हुक्म तलाक वाला ही है लेकिन तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं, और तलाक आला इवज के अंदर तलाक का लफ्ज भी जिक्र होगा और उसमें खावन पैसे भी लेता है, और जबकि एताक आला माल में आका अपने गुलाम को माल के बदले आजाद करता है। तवज्जो है, बात चल रही थी इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह की, मसला यह जिक्र हुआ था कि तरफेन के नजदीक एक ही शख्स जब निकाह का मुतवल्ली हो तो उसको किसी तरफ से भी फजूली नहीं होना चाहिए, ना एक जानिब से और ना दोनों जानिब से, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जब एक शख्स निकाह का वकील होकर मुतवल्ली हो सकता है एक शख्स दोनों तरफ का, तो फजूली होकर भी वो दोनों तरफ का मुतवल्ली हो सकता है। चुनांचे वो जो मसला पीछे जिक्र हुआ था, एक आदमी ने मजलिस के अंदर कहा तुम लोग गवाह रहो मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया, तुम लोग गवाह रहो मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया। अब देखो मजलिस में कोई और कबूल करने वाला नहीं है, पहली सूरत। दूसरी सूरत में तो एक और आदमी ने कहा था मैंने कबूल कर लिया, वो सूरत नहीं, पहली सूरत। जब यही आदमी, इस आदमी ने क्या कहा मैंने फुलानी औरत से अपना निकाह कर दिया तो यह अपना निकाह करवा रहा है, अपने लिए है यह असील और औरत के लिए क्या है फजूली। तो तरफेन क्या फरमाते हैं, यह निकाह मुनाकिद नहीं, बाद में वह औरत इजाजत दे भी दे फिर भी निकाह मुनाकिद नहीं होगा, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा और वह औरत इजाजत देगी तो नाफिज भी हो जाएगा, यह मियां बीवी बन गए भाई। तो कहते हैं देखो इस मजलिस में, इस मजलिस में सिर्फ वो एक ही कौल के साथ निकाह हो रहा है, मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया। इमाम अबू यूसुफ फरमा रहे हैं सिर्फ मर्द के ये कहने से निकाह हो रहा है क्योंकि वो अपने लिए असील है और औरत के लिए फजूली है। तवज्जो है, फिर सुनो, फिर सुनो, तवज्जो से सुनो, गहरी बात आगे कर रहा हूं। एक ही शख्स के कलाम से निकाह मुनाकिद हो रहा है, दो फजूली अलग अलग नहीं है। एक ही शख्स अपना निकाह कर रहा है औरत से, सिर्फ उसने क्या कहा, मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया, तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं औरत इजाजत बाद में दे देगी तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। वो कहते हैं ये इसी तरह है जैसे खावन किसी मजलिस में कह दे मैंने अपनी बीवी से 10 लाख पर खुला कर लिया
जी।
अब हालांकि खुला तो मियां बीवी के अंदर आकद है, खावन की तरफ से जुदाई आती है तो औरत की तरफ से माल आता है। तो खावन एक मजलिस में, तवज्जो से सुनो, खावन ने एक मजलिस में सिर्फ इतना कहा मैंने अपनी बीवी से इतने लाख में खुला कर लिया और फिर उस मजलिस में तो वो औरत है ही नहीं। बाद में उस औरत को ये खबर पहुंची, उसने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही उसने कबूल है कहा साथ ही खुला हो गया, हालांकि वो औरत अलग मजलिस में है और इस मजलिस में सिर्फ इस आदमी ने कहा था कि मैंने उस औरत से क्या कर लिया खुला कर लिया। तो कहते हैं जैसे देखो इस मजलिस के अंदर सिर्फ एक आदमी के कौल पर आकद हो रहा है, बाद में जब वो औरत इजाजत देगी तो ये आकद क्या हो जाएगा मुनाकिद हो जाएगा, ये खुला वाला आकद, तवज्जो है, ये आकद मुनाकिद हो जाएगा हालांकि मजलिस में वो औरत कबूल नहीं कर रही, बाद में कबूल कर रही है। इसी तरह ये जो आदमी ने जिस औरत से निकाह किया था, अभी ये जो मतन में पहला मसला आया था कि आदमी ने क्या कहा मैंने इस औरत से निकाह कर लिया, खुद असील है और औरत की तरफ से ये खुद ही क्या है फजूली है, तो लिहाजा यहां भी एक ही आदमी के कलाम से निकाह होना चाहिए, वो औरत बाद में इजाजत देगी तो निकाह होना चाहिए। नहीं तवज्जो, खुला वाले मसले में क्या कहा और खावन ने एक मजलिस में, मैंने अपनी बीवी से 10 लाख में क्या कर लिया खुला कर लिया, यहां कोई कबूल करने वाला नहीं है। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं देखो खुद खुला कौन कर रहा है खावन, तो ये हुआ असील और औरत की तरफ से क्या है फजूली बन रहा है, और औरत फिर किसी और मजलिस में बाद में इजाजत देती है तो आप क्या फरमाते हैं ए तरफेन, आप फरमाते हैं कि खुला हो जाएगा। तो जैसे यहां पर वो औरत बाद में इजाजत देगी तो खुला हो जाता है, तो ये वहां पर भी अगर वो एक ही शख्स असील भी है और फजूली भी है, उसने जब निकाह किया है औरत बाद में भी इजाजत दे तो वो क्या होना चाहिए मुनक़िद होना चाहिए। दूसरी मिसाल देते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला, तलाक आला माल की। एक खावन जो है किसी मजलिस में कहता है मैंने अपनी बीवी को 10 लाख रुपए के इवज तलाक दे दी। अब देखो ये तलाक आला इवज ये तो एक आकद हो रहा है खावंद में और बीवी में, लेकिन इस मजलिस में सिर्फ खावंद मौजूद है और खावंद अपनी तरफ से तलाक दे रहा है कितने के बदले 10 लाख के बदले, तो खावंद अपनी तरफ से यह आकद कर रहा है, यह हुआ असील और औरत की तरफ से क्या हुआ फजूली हुआ क्योंकि औरत तो यहां मौजूद नहीं है। और फिर आप कहते हैं बाद में वो औरत को खबर मिली, उसने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही उसने कबूल है कहा साथ ही दोनों में तलाक हो गई, अब उस औरत को वो पैसे देने पड़ेंगे
जी।
तो देखो यहां पर भी कोई कबूल करने वाला नहीं, फिर भी आप क्या फरमाते हैं ए तरफेन कि ये तलाक आला इवज एक ही आदमी के कौल से क्या हो रहा है याकद मुनाकिद हो रहा है। यह तीसरी सूरत है इताक आला माल। आका एक मजलिस में बैठा है, उसने कहा मैंने अपने गुलाम को 10 लाख के बदले आजाद कर दिया, गुलाम यहां मौजूद नहीं है, तो आका अपने लिए क्या हुआ आका ये किससे आकद कर रहा है गुलाम से, तो आका क्या हुआ असील और गुलाम की तरफ से क्या हुआ फजूली हुआ, और गुलाम को बाद में, गुलाम तो यहां था नहीं वो किसी और मजलिस में था, बाद में किसी वक्त उसको इत्तला मिली, उसने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही उसने कबूल है कहा साथ ही वो आजाद हो गया, अलबत्ता अब उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो यहां पर भी एक ही आदमी असील भी बन रहा है और फजूली भी, तीनों मसलों में, खुला वाले मसले में भी और तलाक आला इवज वाले मसले में भी और इताक आला माल वाले मसले में भी। तो लिहाजा जब इन तीन मसलों के अंदर सिर्फ एक शख्स के कहने पर आकद हो रहा है तो लिहाजा निकाह वाले मसले में भी आकद होना चाहिए। ये किसकी दलील है? इमाम बुयुस्तो। तो एक ही शख्स दोनों तरफ का मुतवल्ली हो सकता है, चाहे वो फजूली ही क्यों ना हो। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वसार अकल खुल इवत तलाक इवल इताक अला मालिन, और ये इसी तरह हो गया जैसे कि खुला है व तलाक इवल इताक अला मालिन, और तलाक और आजाद करना माल के बदले में। ये अला माल का ताल्लुक तलाक और इताक से है भाई, खुला में तो होता ही माल है। बात समझ में आ गई। तो तलाक आला माल या इताक आला माल, तो तीनों इसी तरह है। वलहुमा, अब तरफेन की दलील आ गई। वलहुमा, तरफेन की दलील यह है। तरफेन फरमाते हैं कौन सी सूरत है? एक ही शख्स अपना निकाह कर रहा है किसी औरत से, तो अपने लिए यह हुआ असील और औरत की तरफ से क्या हुआ? फजूली। और ये गवाहों के सामने कहते हैं मैंने फुलानी से अपना निकाह कर दिया, तो तरफेन ने क्या फरमाया था? ये निकाह बातिल है, बाद में वो औरत इजाजत देगी भी तो भी मुनक़िद नहीं होगा। तो तरफेन फरमाते हैं देखो यहां इस मजलिस में एक आदमी ने कलाम किया है, और एक आदमी जो कलाम करे उसको ईजाब कहते हैं, और ईजाब के लिए हमेशा क्या चाहिए? कबूल चाहिए। तो इस मजलिस में कोई और कबूल करने वाला ही नहीं है, और कबूल तो मजलिस के अंदर ही हो सकता है, बाद में कबूल नहीं। तो लिहाजा ये जो आदमी का कलाम है ये आकद का एक जुज है, पूरा आकद नहीं, और एक जुज की वजह से आकद मुनाकिद नहीं होता, बल्कि आकद के लिए दूसरा जुज यानी कबूल भी चाहिए, और इस मजलिस में तो कबूल नहीं। बाद में वो औरत कबूल करे भी वो तो मजलिस ही अलग है, तो उस कबूल का कोई एतबार नहीं। तो इस आदमी का कलाम क्या था? ये पूरा आकद था या आकद का एक जुज था? आकद का एक जुज था, और एक जुज की वजह से आकद मुनाकिद नहीं होता। बात समझ में आ गई। वो कहते हैं देखो तरफेन की दलील चल रही है। तरफेन फरमाते हैं अगर इसी मजलिस में वो औरत मौजूद होती, फर्ज करो उस वक्त ये आदमी यूं कहता तुम लोग गवाह रहो मैंने इस औरत से अपना निकाह कर लिया, तो हम बताइए सिर्फ यह कहने से निकाह हो जाना था या औरत की तरफ से कबूल भी जरूरी था? औरत उसी मजलिस में मौजूद है, उसकी तरफ से कबूल भी जरूरी है। तो औरत की मौजूदगी के अंदर जब यह आकद का सिर्फ एक जुज है, तो औरत की गैर मौजूदगी में भी यह क्या होगा? आकद का एक जुज ही रहेगा, लिहाजा इससे आकद पूरा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलहुमा, तरफेन की दलील यह है कि अनल मौजूद शतरुल अक्दी, के वो जो मौजूद है यानी ये जो इस आदमी का कलाम है शतरुल अक्दी, ये अकद निकाह का एक जुज है। ले अनहु शतरुन हालत अल हजरती, हजरत का माना मौजूद की, मसलन जो दूसरी है, औरत है मसलन। ले अनहु शतरुन हालत अल हजरती, इसलिए क्योंकि ये उस औरत की मौजूदगी की हालत में एक जुज है ये वाला कलाम। तो फकजा इंदल गैबती, तो उसकी गैबत यानी गैर मौजूदगी में भी ये क्या होगा? आकद का एक जुज ही होगा। व शतरुल अक्दी लाया तवक्कफु अला मा वरा इल मजलिसी, और आकद का जुज जो होता है वो मजलिस के मा बाद पर मौकूफ नहीं होता, उसी मजलिस में कबूल चाहिए, मजलिस के बाद कबूल पर मौकूफ नहीं, बाद में कबूल नहीं आ सकता। भाई जिस मजलिस में ईजाब किया जाए उसी मजलिस में कबूल जरूरी है, मजलिस के बाद कबूल आए तो उसका कोई फायदा नहीं। यही बयान कर रहे हैं वह शत्रुल आकदी, और आकद का एक जुज जो होता है ला तवक्कफु, वो मौकूफ नहीं होता अला मा वरा इल मजलिसी, मजलिस के पीछे यानी मजलिस के बाद पर वो मौकूफ नहीं, मजलिस खत्म तो वो ईजाब भी खत्म, बाद में कबूल किया भी जाए उसका कोई एतबार नहीं। कमा फिल बै, जैसे किसके अंदर होता है? बै के अंदर होता है। आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं, आप ईजाब करते हैं कि ये किताब आपसे मैंने 100 रुपए में खरीद ली, तो वो उसी मजलिस में कबूल कर सकता है, मजलिस के बाद वो कबूल करे भी तो उसका कोई एतबार नहीं, उसी मजलिस में वो कबूल करेगा तो बै हो जाएगी, उसी मजलिस में कबूल नहीं करेगा बाद में कबूल करे भी तो बै मुनाकिद नहीं। बात समझ में आ गई। कमा फिल बै, जैसे कि बै में है और बाकी औकदों में है, बिखिलाफ इल मामूरी मिनल जानिबैन। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने यह जो फजूली जो दोनों तरफ का मुतवल्ली है, एक तरफ से असील है और दूसरी तरफ से फजूली है, तो यह जो शख्स जो दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली है, अलबत्ता एक तरफ से फजूली है, इसको कियास किया था उस वकील पर जो दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली था। तवज्जो है, तो फरमाते थे कि जैसे वो वकील के सिर्फ कलाम करने से निकाह हो जाता है, वहां किसी कबूल की जरूरत, वो वकील है ना, लड़की वालों ने भी जैद को वकील बनाया, लड़के वालों ने भी जैद को वकील बनाया। अब जैद दो गवाहों के सामने कहता है मैंने फुलानी का फुलां से निकाह कर दिया, बस निकाह मुनकिद हो गया, यहां किसी कबूल वगैरह की जरूरत नहीं। तो इमाम यूसुफ फरमाते हैं जैसे वो एक शख्स जो दोनों तरफ से वकील है और निकाह का मुतवल्ली है, तो जैसे सिर्फ उसके कलाम से निकाह मुनाकिद हो जाता है, तो इसी तरह जब एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली है और एक तरफ से या दोनों तरफ से वो फजूली है, तो उसके कलाम से भी निकाह मुनाकिद होना चाहिए, अलबत्ता मौकूफ होना चाहिए। तो अब तरफैन की तरफ से जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह को कि आप इस फजूली के कलाम को जो दोनों तरफ से वकील है उसके कलाम पर कयास नहीं कर सकते, आप इस फजूली के कलाम को वो जो वकील है दोनों तरफ से उसके कलाम पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो तो दोनों तरफ से वकील है, तो उसका कलाम दो कलामों के दर्जे में है, वो इजाब भी है और कबूल भी है, जबकि फजूली तो ऐसा नहीं, उसको तो किसी ने मुकर्रर नहीं किया, उसका कलाम दो कलामों के दर्जे में नहीं है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मामूरी मिनल जानिबैनी, बखिलाफ उस शख्स के जो उसको हुक्म दिया गया है दोनों जानिब से, यानी दोनों तरफ से जो वकील है, लिअन्नहु यंतकिलु कलामुहु इलल आकिदैनी, इसलिए क्योंकि वो जो वकील है उसका कलाम मुंतकिल हो जाता है अकद करने वालों की तरफ, यानी वो मुवक्किल की तरफ मुंतकिल हो गया, गोया उस वकील का कलाम दो कलामों के दर्जे में हो गया। वमा जरा बैन अल फजूली यैन अक्दुन तामुन, और इसी तरह वो जो दो फजूलियों के दरमियान जारी हुआ है अक्दुन तामुन, वो अक्द ताम है। दूसरी सूरत आ गई, अगर अकद करने वाले एक ही फजूली नहीं है बल्कि दो अलग अलग फजूली हैं, तवज्जो है, तो ईजाब भी पाया गया और कबूल भी पाया गया, तो यहां सिर्फ अकद का एक जुज नहीं है, दोनों जुज मौजूद हैं, इसलिए यह अकद मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली है और एक तरफ से क्या है फजूली, तो उसका कलाम दो कलामों के दर्जे में नहीं, उससे निकाह मुनाकिद नहीं होगा। बात भी समझ में आ रही है कि नहीं? वमा जरा बैन अल फजूली यैन अक्दुन ता, भाई बात यह चल रही थी ना, तरफैन फरमाते हैं वो शख्स जो अपना निकाह किसी औरत से कर रहा है और औरत मजलिस में नहीं है, या औरत निकाह कर रही है और जिससे निकाह कर रही है वो उस मजलिस में नहीं, तो गोया एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली हुआ, अपने लिए असील हुआ और दूसरे के लिए फजूली, तो इसका कलाम दो कलामों के दर्जे में नहीं, ये तो अकद का एक जो सिर्फ ईजाब पाया गया, कबूल है नहीं, लिहाजा यह अकद बातिल हो गया। लेकिन अगर दो फजूली मौजूद हैं तो फिर तो ईजाब भी पाया गया और कबूल भी पाया गया, तो वो अकद ताम है, वो मुनाकिद हो जाएगा। ये माना है वमा जरा बैन अल फजूली यैन अक्दुन तामुन, और वो जो दो फजूलियों के दरमियान जारी हो वो तो अकद ताम है, यानी पूरा अकद है, क्योंकि इसमें ईजाब भी है और कबूल भी है। व कदल खुलू व उखताहू, और इसी तरह खुला व उखताहू, और उसकी जो दो बहने हैं, यानी वो जो तीन मसले जिक्र किए थे इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने, तो कहते हैं व कदल खुलू व उखताहू, और इसी तरह खुला है व उखताहू, और उसकी जो दो बहने हैं, वो जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने तीन सूरतें जिक्र फरमाई थी, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फजूली के इस निकाह को किस पर कियास किया था, खुला पर और तलाक आला माल पर और इताक आला माल पर, तो तीन चीजों पर कियास किया था। वहां पर खावंद सिर्फ किसी मजलिस में कह दे मैंने उस औरत से 10 लाख में खुला कर लिया और वहां कोई कबूल करने वाला नहीं है, फिर भी आप कहते हैं किसी और मजलिस में वो औरत कबूल करेगी, तो ये खुला हो गया, हालांकि कोई कबूल करने वाला नहीं। या इसी तरह खावंद कहते हैं मैंने अपनी बीवी को 10 लाख के इवज तलाक दे दी, अब यहां कोई कबूल करने वाला नहीं है, औरत किसी और मजलिस में कबूल करेगी तो ये तलाक हो जाएगी, तवज्जो है। या आका कहता है कि मैंने अपने गुलाम को 10 लाख के इवज आजाद कर दिया और वह गुलाम किसी और मजलिस में बाद में जाकर कहता है मुझे कबूल है, तो देखो यहां एक ही आदमी के कलाम पर अकद पूरा हो रहा है, यहां कोई कबूल करने वाला नहीं, तवज्जो है। तो उसका भी जवाब देंगे तरफेन की तरफ से कि भाई ये जो कलाम है ना, ये जो खुला है और ये जो तलाक आला माल है और ये जो इताक आला माल है, ये दरअसल तालीक है। क्या है? तालीक है। और तालीक जो है वो तालीक करने वाले से ही पूरी हो जाती है, उसमें किसी कबूल की जरूरत नहीं। तालीक आप जानते हो, एक चीज को किसी दूसरी चीज पर मुअल्लक करना। मसलन कोई खावंद अपनी बीवी से कहता है अगर तू उस फुला घर में गई तो तुझे तलाक है। तो देखो तलाक को मुअल्लक कर दिया उस घर के अंदर जाने पर। औरत जैसे ही उस घर में जाएगी फौरन उसको तलाक हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? तालीक भाई। अल्लाह युअल्लिको तालीकन भाई, किसी शर्त के साथ किसी हुक्म को मुअल्लक करना। तो तरफेन जवाब दे रहे हैं कि ये जो खुला है, ये तलाक और एताक आला माल जो हैं, ये दरअसल तालीक है भाई। ये क्या है? तालीक। और तालीक में किसी कबूल की जरूरत नहीं होती। तालीक में किसी कबूल की जरूरत नहीं। भाई खावन ने कहा अपनी बीवी से अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। मुझे बताइए क्या औरत का इसको कबूल करना जरूरी है? नहीं। औरत कबूल करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तालीक है, इसमें कबूल की जरूरत ही नहीं। ये सिर्फ एक आदमी के कहने से ही बात पूरी हो गई। अब औरत उस घर में जाएगी तो तलाक हो जाएगी। तो तालीक में दूसरे के कबूल की कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह ये जो खुला और तलाक और इताक आला माल है, ये भी तालीक है। तो आप इस फजूली के निकाह को इन पर कयास नहीं कर सकते भाई, क्योंकि फजूली का जो निकाह था वो तालीक नहीं थी, वो मुअल्लक नहीं कर रहा था निकाह को किसी चीज के साथ, वो तो निकाह बाकायदा कर रहा था। और ये जो खुला और इताक और तलाक आला माल है, ये क्या है? तालीक। किस तरह तालीक है? गोया खावन ने यूं कहा अगर औरत मुझे 10 लाख रुपए देना मंजूर करती है तो मैंने उससे खुला कर लिया
जी।
ये तो खावन ने तालीक कर दी, तालीक कर दी। और तालीक मजलिस पर नहीं होती भाई, मजलिस पर बंद नहीं होती। तो वो जब भी औरत इसको कबूल कर लेगी तो ये खुला हो जाएगा। या तलाक आला आइवज देखिए, अगर वो औरत मुझे 10 लाख रुपए देना मंजूर करती है तो मेरी तरफ से उसको तलाक है, ये तालीक हो गई। तालीक मजलिस पर बंद नहीं रहती। देखो खावन ने एक मजलिस में कहा अपनी बीवी से अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। तो मुझे बताइए क्या ये तालीक सिर्फ इसी मजलिस तक रहेगी या हमेशा के लिए है? ये तालीक हमेशा के लिए है, सारी जिंदगी। जब भी ये औरत उस घर में जाएगी तो इसको तलाक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी जो आदमी ने कहा ना, तवज्जो से समझो, आदमी ने जब कहा खुला किया, क्या कहा था कि मैं अपनी बीवी से 10 लाख रुपए पर खुला करता हूं, तो तरफेन फरमाते हैं ये दरअसल तालीक कर रहा है। और तालीक सिर्फ तालीक करने वाले पर बात पूरी हो जाती है, उसमें दूसरे के कबूल की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसने तालीक कर दी कि औरत अगर मुझे 10 लाख देना मंजूर करती है तो मैं उससे क्या करता हूं? खुला करता हूं। तो ये इसने तालीक कर दी। जैसे उसने तालीक की थी कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, वो जब भी उस घर में जाएगी उसको तलाक हो जाएगी। यहां पर भी इसने तालीक कर दी है तो जब भी वो कबूल करेगी खुला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तालीक है। चुनांचे इसीलिए इससे खावंद रुजुआ नहीं कर सकता। अब खावंद इससे रुजुआ, एक होता है ईजाब और कबूल। ईजाब में रुजुआ किया जा सकता है जब तक कबूल ना आया हो। मसलन मैंने आपसे कहा यह किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, आप इसको कबूल कर सकते हैं इसी मजलिस में। लेकिन आपके कबूल करने से पहले पहले मैंने कहा नहीं नहीं भाई मैं नहीं बेचना चाहता, तो बस ईजाब खत्म हो गया। अब आप कबूल कर ही नहीं सकते भाई। तो ईजाब के अंदर कबूल से पहले पहले रुजू किया जा सकता है, लेकिन तालीक एक दफा जुबान से निकल गई वहां रुजू नहीं हो सकता। खावन ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, अब इससे खावन रुजू नहीं कर सकता। अब ये सारी उम्र ये तलाक मुअल्लक है, खावन अब रुजू नहीं कर सकता। जब औरत उस घर में जाएगी तलाक हो जाएगी। तवज्जो है? मालूम हुआ ईजाब में रुजू किया जा सकता है कबूल से पहले पहले, लेकिन तालीक में रुजू नहीं किया जा सकता। चुनांचे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, उन्होंने इस फजूली के निकाह को किस पर कयास किया था? खुला और तलाक आला इवज और इताक आला इवज पर। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि जो खुला और तलाक आला इवज और इताक आला इवज, ये सिर्फ जब ये जो खामन ने जुमला कहा कि मैं अपनी बीवी से 10 लाख पर खुला करता हूं, बीवी ने और मजलिस में कबूल कर लिया तो वो कब हो जाएगा। या खावन ने कहा मैं 10 लाख के इवज अपनी बीवी को तलाक देता हूं, औरत ने बाद में किसी मजलिस में कबूल कर लिया तो तलाक हो जाएगी। या आका ने कहा मैंने अपने गुलाम को 10 लाख रुपए के इवज आजाद कर दिया, गुलाम ने किसी और मजलिस में कबूल कर लिया, तो इन तमाम सूरतों में याद रखो तरफैन फरमाते हैं ये तालीक है, ये ईजाब है ही नहीं। और दलील इसकी यह है कि खावंद या आका अब इस कलाम से रुजू नहीं कर सकता। खावंद ने कहा अगर वो 10 लाख मंजूर करती है तो मैं खुला करता हूं, बाद में कहता है नहीं 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 मैं नहीं करता, नहीं भाई अब आप रुजू नहीं कर सकते। रुजू न करना बतला रहा है कि यह ईजाब नहीं था बल्कि क्या था, तालीक थी। आका ने कहा मैं अपने गुलाम को 10 लाख रुपए के इवज आजाद करता हूं, बाद में कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आजाद करता, नहीं भाई आप रुजू नहीं कर सकते, तालीक हो चुकी। अब गुलाम जब भी इसको कबूल करेगा तो गुलाम आपके हाथ से निकल जाएगा
जी।
बात समझ में आ गई। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे थे कि फजूली के सिर्फ कलाम से निकाह मुनाकिद होना चाहिए, जैसे खुला और तलाक और इताक आला इवज के अंदर एक ही आदमी के कलाम से वो अकद क्या हो रहा था, मुनाकिद हो रहा था। तो उसका जवाब दे दिया कि आप उस फजूली के निकाह को इन पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि फजूली का जो कलाम है वो सिर्फ ईजाब है, और जबकि ये खुला और तलाक और इताक आला माल ये तालीक हैं। और फर्क ये है कि ईजाब से रुजू हो सकता है लेकिन तालीक से रुजू नहीं हो सकता, तो यहां ये रुजू नहीं कर सकते, लिहाजा ये तालीक है। तो आप उस फजूली के निकाह को तालीक पर कयास नहीं कर सकते, तालीक और चीज है, ईजाब और चीज है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकदल खुलउ व उखताहू, और इसी तरह खुला और उसकी जो दो बहनें हैं वो भी क्या है, पूरा आकद है, क्योंकि वो तालीक है। लिअन्नहु तसर्रुफु यमीन मिन जानिबिही, इसलिए क्योंकि ये जो तीनों हैं इनमें से हर एक तसर्रुफे यमीन है मिन जानिबिही उस मर्द की तरफ से। मैंने क्या कहा, ये तीनों क्या हैं, तालीक, और साहिबे हिदाया फरमा रहे हैं ये तसर्रुफे यमीन है। यमीन कहते हैं कसम को, यमीन किसको कहते हैं, कसम। याद रखो फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं, तालीक को भी
यमीन।
ये तालीक क्या है, खावन ने कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तवज्जो है। और कसम किसे, मसलन कोई आदमी कसम खाता है वल्लाह मैं फलां काम नहीं करूंगा, तवज्जो है। तो तालीक और चीज है, यमीन और, लेकिन फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं, फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं। वजह यह कि जैसे कसम खाई जाती है किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए होती है। मसलन एक आदमी है वो कहता है वल्लाह मैं ये काम जरूर करूंगा, देखो अब उसने कसम खा ली, उसने इसलिए कसम खाई है ताकि अपने नफ्स को उभारे कि यह अब करना ही पड़ेगा, अब तो कसम खा ली है, तवज्जो है। या एक आदमी कहता है वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, तो कसम किस लिए खाई, उस काम से अपने आप को रोकने के लिए, तवज्जो है। तो कसम किसी काम पर उभारने, अपने आप को किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए खाई जाती है। इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए की जाती है। खावन ने कहा बीवी से अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, यह किस लिए तालीक कर रहा है, उस घर से उसको रोकने के लिए तालीक कर रहा है, तवज्जो है। तो तालीक भी इसी तरह किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए, यह दूसरी सूरत ले लो उभारने के लिए। खावन बीवी से कहता है अगर तू शाम तक उस घर के अंदर न गई तो तुझे तलाक है, यह क्या कर रहा है, उसको उभार रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा उस घर में आज शाम तक वरना तुम्हें क्या हो जाएगी, तलाक। तो जैसे कसम किसी काम पर कभी उभारने के लिए होती है, कभी रोकने के लिए, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए होती है या किसी काम से रोकने के लिए। तो हासिल कलाम ये कि तालीक को भी यमीन कहते हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह यमीन किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए होती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए होती है। यहां एक और कीमती बात याद रखना, फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं, लेकिन उस तालीक को जिसमें किसी काम पर उभारा जा रहा है या रोका जा रहा है, हर तालीक को यमीन नहीं कहते, हर तालीक को यमीन
नहीं।
मैंने अभी मिसाल जिक्र कर दी, खावंद कहते हैं अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक मालूम हुआ, रोकना चाह रहा है, इसको यमीन कहेंगे, रोकने के लिए यह तालीक है। या खावंद कहता है बीवी को अगर तू उस घर में शाम तक न गई तो तुझे तलाक मालूम हुआ, अब उसको उभार रहा है कि उसको वहां जाना पड़ेगा। तो ये जो तालीक है जिसमें किसी काम पर उभारा जा रहा है या किसी काम से रोका जा रहा है, इस तालीक को यमीन कहेंगे। हर तालीक को यमीन नहीं कहेंगे। अगर एक शख्स तालीक करता है लेकिन ना वहां उभारना है ना रोकना है, उसको यमीन नहीं कहेंगे। मसलन एक शख्स कहता है कि कल जब सूरज तुलू होगा तो उस वक्त मेरी बीवी को तलाक है, कल जब सूरज तुलू होगा तो उस वक्त मेरी बीवी को तलाक है। तो देखो कल सुबह सूरज तुलू होगा तो उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। अब यहां ना उभारना है किसी काम पर और ना किसी काम से रोकना है, तो तालीक तो है लेकिन इसको यमीन नहीं कहेंगे। तो यमीन किस तालीक को कहते हैं? जिसमें किसी काम पर उभारना या रोकना हो। भाई ये कीमती बात याद रखना भाई। तो फिका में तालीक को भी क्या कहते हैं? यमीन कहते हैं। तवज्जो है। तो लिहाजा ये खुला और तलाक और इताक अला माल ये तीनों क्या हैं? तालीक हैं। बात समझ में आ गई। ये माना है लिअन्नहु तसर्रुफु यमीन मिन जानिबिही, इसलिए क्योंकि ये खुला वगैरह ये इनमें से हर एक तसर्रुफे यमीन है, मिन जानिबिही उस आदमी की जानिब से यानी खावंद या आका की जानिब से। हत्ता यलजमु, ये हत्ता के बाद यलजमु मरफू पढ़ना है भाई। हत्ता वैसे नसब देता है फेले मुजारे को, लेकिन यहां मुल्ला अब्दुल गफूर हाशिए में फरमाते हैं भाई, मुल्ला अब्दुल गफूर ये शागिर्द हैं मुल्ला जामी रहमहुल्ला के और बहुत बड़े आलिम हैं, और कमाल का हाशिया लिखते हैं, हिदाया के मुश्किल मकामात को हल करते चले जाते हैं। तो मुल्ला अब्दुल गफूर फरमाते हैं कि यह हत्ता इब्तिदाइया है, लिहाजा इसके माबाद का माकबल पर आतफ नहीं है, जब आतफ नहीं है तो अन वगैरह यहां मुकद्दर नहीं होगा, लिहाजा इस पर रफा पड़ेंगे। हत्ता यलजमु, बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया कि ईजाब जो है ईजाब से रुजू हो सकता है लेकिन तालीक से रुजू नहीं हो सकता, यही बयान कर रहे हैं कि देखो फिर सुनो, लिअन्नहु तसर्रुफु यमीन मिन जानिबिही, इसलिए क्योंकि ये खुला वगैरह इनमें से हर एक वो तसर्रुफे यमीन है उस मर्द की तरफ से। हत्ता यलजमु, यहां तक कि ये उस पर लाजिम हो जाता है, यानी वो रुजू नहीं कर सकता, वो लाजिम हो गया है। फयतिम्मु भी ही, तो ये उसी पर ताम हो गया, तो वो उसी कसम खाने वाले पर, उसी तालीक करने वाले पर ताम। देखो तालीक, फिर सुनो, तालीक के अंदर दूसरे का कबूल जरूरी है या सिर्फ एक ही आदमी पर तालीक पूरी हो जाती है? एक ही आदमी के कलाम से, एक ही आदमी के कलाम से तालीक पूरी हो जाती है। इसी तरह कसम, एक ही आदमी के कलाम से कसम मुनाकिद हो जाती है या दूसरे का कबूल करना भी जरूरी है? एक ही आदमी का कसम उठाएगा कि बल्ला मैं ये काम नहीं करूंगा तो देखो कसम तो मुनाकिद हो गई, इसी तरह तालीक भी मुनाकिद हो गई। बात समझ में आ गई। तो तालीक और कसम जो है वो एक ही आदमी पर बात पूरी हो जाती है, वहां दूसरे के कबूल की जरूरत नहीं। तो यही फरमा रहे हैं कि जो खुला वगैरह हैं ये तालीक हैं, इसीलिए ये लाजिम भी हो गए, रुजू भी नहीं कर सकता, और नीज ये तालीक हैं, और तालीक तो एक आदमी पर पूरी हो जाती है, लिहाजा ये भी एक आदमी पर ही बात पूरी हो गई। ये माना है कि हत्ता यलजमु, यहां तक कि ये जो तसर्रुफ किया है ये लाजिम हो जाता है, यानी अब इसे रुजू नहीं कर सकता। फयतिम्मु बिही, तो जब ये तसर्रुफ यमीन है, फयतिम्मु बिही, तो उसी एक आदमी पर ही ये पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए इसमें कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। चलिए बस बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।